నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. సభీ భక్తో కా స్వాగత్ హై హమారే శ్రీమద్ భాగవత్ సప్తాహ కే ఆజ్ కే ఇస్ చౌథే దిన్ మే. భగవాన్ జబ్ ఇస్ ధరా ధామ్ మే ఆతే హై తో బహుత్ సే ప్రయోజన్ హోతే హై భగవాన్ కే ఆనే కే. परंतु सबसे विशेष प्रयोजन भगवान का आने का यह है कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा बांटने आते हैं और भगवान सभी को अपना भक्त बनाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने में ही मनुष्य का सर्वोत्तम श्रेय है. इस भौतिक संसार में हम विशेष रूप से मनुष्य समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हैं कुछ न कुछ श्रेय ढूंढते हुए, परंतु बहुत ही कम विरला कोई मनुष्य जानता है कि वास्तविक श्रेय उसका कहां पर है. इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो न केवल परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में स्थित हैं, हमारे साथ सबसे निकट भगवान ही हैं हमारे आत्मा के, न केवल वो हमारे साथ साथ हर एक योनि में अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं, अपितु वो स्वयं आते हैं, अवतीर्ण होते हैं ताकि हम हमारे हृदयों में जो परमात्मा स्थित है उनकी तरफ अपना मुख करें, हमें याद दिलाने के लिए कि हम भगवान को भूले हुए हैं. कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे. कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, भोग की वांछा, इंद्रिय भोग की वांछा कब होती है हमारे हृदय में? कृष्ण भूलिया, जब हम भगवान श्री कृष्ण को भूलते हैं तुरंत उसी क्षण भोग की वांछा उत्पन्न होती है. कृष्ण को भूले, भोग की वांछा पैदा हुई. तो भोग की वांछा, इसे पैदा होने का कारण क्या है? जैसे हमारे पैदा होने का कारण हमारे माता पिता, उनके पैदा होने का कारण उनके माता पिता, तो भोग की वांछा इसे पैदा करने का कारण है कृष्ण भूलिया. कृष्ण को जब हम भूलते हैं, और क्या हम इसे स्वीकृति नहीं देंगे कि हम कृष्ण को भूले हुए हैं? हम सब एक कैदी के समान हैं इस भौतिक संसार में, जो एक कारागृह के समान है। एक कैदी कारागृह में बंद क्यों होता है? जब वो नियमों का पालन नहीं करता, जब वो नियमों का उल्लंघन करता है, तब उसे कैद होती है। तो इस भौतिक संसार को कहा गया है दुर्ग। दुर्ग का अर्थ है वो स्थान जहां से बाहर निकल पाना दुर्गम, वो दुर्गम स्थान। और इसलिए इस भौतिक संसार की अधिष्ठात्रा देवी या इस कैद खाने की जेलर कौन है? दुर्गा देवी। तो यदि ये भौतिक संसार एक कारागृह है, एक दुर्ग है, तो हम सब कौन हुए? कैदी। तो भगवान श्री कृष्ण को जब हम भूलते हैं तो भोग की वांछा उत्पन्न होती है। तो इसके विपरीत यदि हम इस तर्क को लें तो भगवान श्री कृष्ण की वांछा कब पैदा होगी? कब पैदा होगी? यदि भोग की वांछा पैदा होती है जब कृष्ण को हम भूलते हैं, तो कृष्ण भक्ति की वांछा कब पैदा होगी? जब हम भोग की वांछा को भूलेंगे। तो कहा गया है कि जब हम कृष्ण को भूलते हैं तो भोग की वांछा पैदा होती है, और जब भोग की वांछा पैदा होती है तो इसका अगला परिणाम क्या है? निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। माया, सभी वाकिफ हैं माया देवी से। माया देवी वो हमारे निकट हैं, जैसे कि परमात्मा हमारे निकट हैं, वैसे माया देवी भी हमारे निकट हैं। और ये हमारे ऊपर है कि हम किसका चयन करते हैं, भगवान का या माया देवी का, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप सभीयों ने यहां पर आने का चयन किया, तो आपने ये चुनाव किया है, किसी ने आपके ऊपर बंदूक नहीं रखी थी यहां पर आने के लिए, नहीं ना? बंदूक के नोक पर आपको यहां पर नहीं बिठाया गया है, आप अपनी स्वेच्छा से आए हो। तो ये जो स्वेच्छा हमारे अंदर है, हम सबके अंदर है, इसे शास्त्रों में कहा गया है स्वतंत्र रत्न। ये हमारा स्वतंत्र रत्न है, हम सबका निजी स्वतंत्र रत्न। जैसे हमने चर्चा की कृष्ण प्रेम, सुप्त कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में, वो हमारा असली खजाना है। सुप्त कृष्ण प्रेम हमारा असली खजाना, उसी के समान ये जो स्वेच्छा, ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, ये भी हमारा एक निजी खजाना है, स्वतंत्र रत्न जिसे कहा गया है। और इसलिए भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। कि जब इस स्वेच्छा का हम दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं इस इच्छा का, तो गलत उपयोग के वजह से, दुरुपयोग के वजह से इच्छा परिणित होती है द्वेष में। और किनसे, किनसे द्वेष? पड़ोसियों से नहीं, हमारे ऑफिस के बॉस से नहीं। किससे द्वेष? इन भगवान से द्वेष। तो द्वेष, ये इच्छा के दुरुपयोग करने से जो द्वेष परिणित होता है, दो प्रकार का है। एक है कि ये भगवान क्यों हैं, ये परम भोक्ता क्यों हैं, ये सबसे पहला द्वेष। और दूसरा द्वेष, मैं परम भोक्ता क्यों नहीं। तो ये है माया की पकड़ हमारे ऊपर, बहुत गहरी। बहुत समय से माया पकड़े हुए है। क्यों? क्योंकि बहुत समय से हम भोगवांछा अपने अंदर रखे हैं। और बहुत समय से भोगवांछा क्यों है? क्योंकि बहुत समय से कृष्ण भूलिया। तो इसलिए भगवान वो इतने कृपालु हैं कि हम उन्हें भूल चुके, न केवल भूल चुके बल्कि इस भौतिक संसार में, इस दुर्ग में आकर हम द्वेषी बन चुके हैं। अब इतना दुर्लक्ष कर दिया है भगवान को कि यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो हमारे विषय में कभी कुछ सोचता भी नहीं। परंतु भगवान ऐसा नहीं है। भगवान कैसे हैं, इसकी चर्चा हमने की। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। करुणा के सिंधु हैं ये, और वो भी ऐसे सिंधु, ऐसे सिंधु हैं ये भगवान कि ये स्वयं सिंधु की सीमाएं होती हैं। एक समुद्र अपने सीमाओं में रहता है और ये समुद्र का गुण है, वो अपनी सीमाओं को कभी लांग कर बाहर नहीं आता। परंतु भगवान ऐसे करुणा के समुद्र है जिन्होंने अपनी सीमाओं को लांग दिया है। किस लिए? क्योंकि हम उस समुद्र के पास नहीं जा रहे। तो समुद्र ने सोचा, करुणा सिंधु, वो भगवान ने सोचा कि यदि ये बद्ध जीव मेरे पास नहीं आ रहा तो मैं जाता हूं, मैं अपनी सीमाओं को पार कर इसके पास आता हूं। तो इसलिए भगवान अपने इस हरे कृष्ण महामंत्र, इस हरि नाम में भगवान अवतीर्ण हुए। हर क्षण, किसी भी जगह, किसी भी समय भगवान हमारे लिए इस हरि नाम के रूप में मौजूद हैं। तो भगवान ने ये सारे असुरों का वध किया, उद्धार किया। किन किन का अब तक हो गया है उद्धार? पूतना, शकटासुर और तृणावर्त। तो भगवान ने ये तीन पहले असुर जो आए, भगवान ने इन तीनों असुरों का उद्धार किया, जो कि इतने नृशंस तरीके से भगवान को मारना चाहते थे। पूतना ऐसा दुर्जर विष लगाकर आई थी मारने के लिए, शकटासुर धसा के भगवान को मारना चाहता था, तृणावर्त ऊपर से भगवान को फेंकना चाहता था, परंतु भगवान ने केवल इन तीनों के गुण देखे। इसलिए कहते हैं, हे गोविंदा, हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल।
केशव माधव दीन दयाल।
बोलो, हे गोविंदा, हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल।
गोविंदा, हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल।
हे गोविंदा, हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल।
हे गोविंदा, हे गोपाल,
जोर से,
केशव माधव दीन दयाल।
दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल।
दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल।
जोर से बोलिए,
दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल।
दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल।
दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल।
दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल।
दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल।
अच्युत केशव श्री राधा वल्लभ गोविंद गोपाल हरि। अच्युत केशव श्री राधा वल्लभ गोविंद गोपाल हरि।
अच्युत केशव श्री राधा वल्लभ गोविंद गोपाल हरि।
बोलो, अच्युत केशव श्री राधा वल्लभ गोविंद गोपाल हरि।
केशव श्री राधा वल्लभ गोविंद गोपाल हरि।
तुमि परम दयाल प्रभु, परम दयाल,
दयाल प्रभु, परम दयाल।
तुमि परम दयाल प्रभु, परम दयाल,
परम दयाल,
परम दयाल प्रभु, 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 परम दयाल।
हे गोविंदा, हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। गौर हरि बोल।
केशव माधव दीन दयाल।
हे गोविंद, हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल।
हे गोविंद, हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल।
दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल।
दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल।
और हरि
बोल। दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल।
बोलो, दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल,
दीन दयाल प्रभु दीन दयाल
दीन दयाल प्रभु दीन दयाल दीन दयाल प्रभु दीन दयाल
अच्युत केशव श्री राधा वल्लभ गोविंद गोपाल हरि
अच्युत केशव श्री राधा वल्लभ गोविंद गोपाल हरि
बोलो अच्युत केशव श्री राधा वल्लभ गोविंद गोपाल हरि
अच्युत केशव श्री राधा वल्लभ गोविंद गोपाल हरि
तुम्ही परम दयाल प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल
परम दयाल प्रभु परम दयाल परम दयाल
तुम्ही परम दयाल प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल
परम दयाल प्रभु परम दयाल प्रभु
हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल
हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल
परम दयाल प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल
परम दयाल प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल
तो भगवान ने शकटासुर तृणावर्त और इन सब का उद्धार कर भगवान ने उनका ये जो गुण है परम दयालु जो है वो भगवान ने दर्शाया। तो आज का शीर्षक है मृदभक्षण लीला। परंतु जैसा कि कल हमने कहा था कि भगवान ने इन तीन असुरों का वध करने हेतु भगवान ने क्या स्थापित किया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहां पर भगवान ने पूतना का उद्धार या पूतना का वध यदि हम लें तो भगवान ने कौन से शस्त्र का इस्तेमाल किया पूतना के वध करने के लिए? कोई शस्त्र उठाया भगवान ने? कोई शस्त्र नहीं उठाया। पूतना के वध के लिए भगवान ने केवल अपने होठों का इस्तेमाल किया। हमारे शरीर के सारे अंग यदि लें तो क्या हमारे होठ शरीर के सारे अंगों में से क्या बहुत मजबूत अंग है ये होठ? यदि किसी के ऊपर कोई व्यक्ति मुंह से भी प्रहार करता है तो एक प्रकार का प्रहार है जिह्वा से, अपशब्द जब कहता है बहुत गहरा हो जाता है वो प्रहार। तो एक है जो जिह्वा से प्रहार होता है और इतना नहीं तो कोई व्यक्ति दांतों से काट दे किसी को। परंतु भगवान ने कोई किसी को होंठों से कुछ कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है होंठों से? नहीं, कुछ नहीं। ये होंठों में क्या शक्ति है इतने ये मुलायम से, पता नहीं इसके अंदर हड्डी भी है कि नहीं, परंतु भगवान ने देखिए और पूतना कितनी बड़ी थी, इतने मीलों लंबी, 8 मील लंबी ये पूतना, और इतना विकराल इसका शरीर, घोर इसका रूप, चिंघाड़ती हुई ये पूतना, भगवान ने केवल अपने होठों से पूतना का वध कर दिया। अब भगवान के अवतारों में भी आप लें तो भगवान के अवतारों में भी सारे अवतारों ने जब किसी का वध किया तो किसी शस्त्र से, किसी शस्त्र को लेकर। जब भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया तो कैसे किया? राम बाण से। नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया तो नाखूनों से, और इतना बड़ा उन्हें वो रूप लेना पड़ा नरसिंह का, नर और सिंह का। तो भगवान अपने अन्य अवतारों में जब असुरों का वध किए हैं तो भगवान बड़े बने हैं, बृहद बने हैं, शस्त्र भगवान ने लिए हैं उनका वध करने के लिए। परंतु यहां पे सबसे पहला असुर, ये राक्षसी, भगवान 6 दिन के उतने से ही भगवान अपने आप को बड़ा नहीं किए, भगवान ने केवल होठों से पूतना का वध कर दिया। ये एक कारण है कि भगवान श्री कृष्ण तू स्वयं, कृष्णस्य तू भगवान स्वयं, और शकटासुर का वध कैसे हुआ? भगवान ने, कल हमने सुना, भगवान ने केवल प्रवाल मृदु अंगरी स्पर्शम, भगवान के जो अंगरी, भगवान के जो चरण, 3 महीना के भगवान, भगवान ने केवल उन चरणों को, उस शकटासुर को स्पर्श किया, केवल स्पर्श करने मात्र से वो शकटासुर पूरा, कल हमने सुना आश्चर्यजनक बातें, क्या क्या सुखदेव गोस्वामी हमें बता रहे हैं। तो शकटासुर का उद्धार केवल भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श, और तृणावर्त, भगवान ने तृणावर्त का केवल आलिंगन किया। देखिए, केवल आलिंगन करने मात्र से तृणावर्त धराशाही होकर गिर पड़ा। तो इन 3 असुरों को हम लें तो पूतना के लिए भगवान ने होठों का इस्तेमाल किया, शकटासुर के लिए अपने चरणों का, और तृणावर्त के लिए अपने हाथों का। जो भी असुर कंस ने भेजे, ये कंस, ये उस मामा के समान था। मामा होते हैं ना, अपने भांजियों के लिए खिलौने भेजते रहते हैं। तो कंस ने सोचा कि मेरा भांजा जन्मा है तो थोड़ा खिलौना भेजना चाहिए ना भांजे के खेलने के लिए। तो सबसे पहली गुड़िया, सबसे पहली गुड़िया भेजी कंस ने, पूतना। कितनी बड़ी थी ये गुड़िया? केवल 8 मील लंबी थी। और फिर खेलने के लिए एक शकट भेज दिया गाड़ी, उसके पश्चात फिर हवाई यात्रा करने के लिए मामा जी ने तृणावर्त एयरलाइंस को भेज दिया। अब मामा तो भांजों के लिए खिलौने भेजते हैं, परंतु कई बार भांजों की आदत क्या होती है, वो खिलौने तोड़ देते हैं खेलते खेलते। तो भगवान ने भी सोचा कि यदि मेरा मामा कंस मेरे लिए खिलौने भेज रहा है और ऐसे ऐसे खिलौने भेज रहा है, तो मैं भी एक भांजा का रोल अदा करता हूं और इन्हें तोड़ता हूं। तो मामा कंस खिलौने भेज रहा था और यहां पर भांजे कृष्ण उन खिलौनों को तोड़ रहे थे। परंतु भगवान केवल तोड़ ही नहीं रहे थे, भगवान वास्तविक रूप में उन खिलौनों को जोड़ रहे थे। वो टूटे हुए थे, भगवान ने उन्हें जोड़ा। किनसे? उनसे, स्वयं से। हम सब भी इन खिलौनों के समान हैं जो टूटे हुए हैं और हमें जोड़ना है अपने आप को इन भगवान से। तो आज हम शुरुआत करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि भगवान ने न केवल इन तीन असुरों का वध या उद्धार करने के पश्चात ये स्थापित कर दिया कि वो ही वो स्वयं भगवान हैं जो अवतरित हुए हैं, बल्कि भगवान ने अपनी हर एक लीला में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्थापित किया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो हम देखेंगे कि भगवान कैसे स्थापित किए हैं, विशेष रूप से भगवान जो वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवत से, एते चाम शकलः पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। श्रीमद् भागवत के सुंदर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को विशेष पद दिया गया है कि वो सभी के स्रोत हैं, वो ही हैं वो भगवान जो कि सबके उद्गम स्थान हैं। और ये हमें विशेष रूप से देखना है आज, हम जो इस भारत भूमि में जन्मे हैं और विशेष रूप से इस कलयुग में हम जो भारतीय हैं। हमने इसकी चर्चा की, कितने सारे ढोंगी भगवान घूम रहे हैं और कितने सारे अंट शंट तथा कथित वैदिक क्रियाएं चल रही हैं। तो कैसे हम जाने कि कौन व्यक्तिगत रूप से प्रामाणिक रूप से भगवान है? अरे कोई एरा गैरा लट्ठू ठहरा खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज का भगवान मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ सोना पैदा कर सकता हूं, मैं कुछ जादू का खेल दिखा सकता हूं। अरे ऐसे जादूगर बहुत हैं जो कहीं से कुछ भी पैदा कर दिखा देते हैं, परंतु उन्हें भगवान नहीं कहा जाता। उन्हें क्या कहा जाता है? केवल एक जादूगर। और जादूगर करते क्या हैं? हाथ की सफाई यही वो करते हैं, हाथ की सफाई। हमारी आंखों को भ्रमित कर हाथ की सफाई होती है, परंतु भगवान जब ऐसे जादुई कर्म करते हैं जैसे पूतना, शकटासुर और तृणावर्त जैसे बड़े बड़े बृहद असुरों का उद्धार और वध, तो भगवान केवल अपनी हाथ की सफाई नहीं बल्कि उनकी सफाई, उनकी हृदयों की सफाई करते हैं और उनके साथ हमारे हमारे हृदयों की सफाई भगवान करते हैं जब हम इन कथाओं का श्रवण करते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में कहा गया है एते च अंश कलह, भगवान के विभिन्न प्रकार के विभाजित अंश और कलह हैं, उन सब में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। बाकी सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और कला हैं। वो हैं अवतारी, वो हैं स्वयं भगवान। और ये हम कैसे जानेंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो स्रोत हैं। किन किन के स्रोत हैं पहले हम देखते हैं। भगवान संपूर्ण सृष्टि के स्रोत हैं और भगवान ने गीता में इसका उल्लेख किया है, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वित। भगवान स्वयं अपने मुख से कहे हैं और कहे नहीं बल्कि दिखाया भी अर्जुन को, अहम सर्वस्य प्रभव, मुझसे ही सब कुछ उदित हुआ है, मैं ही इस पूरी सृष्टि का न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक, न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक सारी सृष्टियों के स्रोत हैं भगवान। तो वो व्यक्ति, वो पुरुष, परम पुरुष कहलाए जाएगा जिससे सब कुछ उद्धृत हुआ है। जैसे कि एक परिवार में जो माता पिता हैं वो स्रोत हैं उस परिवार के बच्चों के, तो परिवार में जो माता पिता हैं उन्हें परिवार का सर्वोपरि कहलाया जाता है। परंतु वो जब अपने माता पिता के पास जाते हैं तो वो वहां उनके चरणों को छूते हैं। तो ऐसे यदि हम अपने सारे माता पिताओं को पीछे ढकेलते हुए जाएं तो हमारे मूलतः माता पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ने कहा कि मैं इस पूरी सृष्टि का स्रोत हूं, और इसलिए भगवान कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में जितने सारे तत्व हैं, भूमिर आप अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच, कितने सारे तत्व हैं, ये पंच तत्व, पंच महाभूत, भूमि आप अनल वायु खम, ये सारे जो पंच महाभूत हैं, भगवान कहते हैं न केवल मैं इनका स्रोत हूं बल्कि मन बुद्धि जो हमारे अंदर, हमारी मन और बुद्धि है जिसके बलबूते पर हम क्या कुछ नहीं कर रहे, उन सब के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ये जो पूरी सृष्टि जिसमें हम जिलाए गए हैं, इस पूरी सृष्टि के स्रोत हैं भगवान। तो ये कारण है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि वो पूरी सृष्टि के स्रोत हैं। और भगवान सभी जीवात्माओं के स्रोत हैं। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान स्वयं अपने मुख से कहे हैं भगवद गीता के 14वें अध्याय में कि इस पूरी सृष्टि के जितने जीव हैं, हम सब, सृष्टि तो जड़ पदार्थ हो गई, परंतु हम चेतन जीव जो हमारा आत्मा, भगवान हमारे आत्मा का भी स्रोत है। भगवान कहते हैं कि ये सारे जो जीव ये मेरे अंश हैं, ममाय वामशो जीव लोके। तो स्वयं भगवान कहे हैं कि वो स्रोत हैं न केवल जड़ वस्तु के, बल्कि चेतन पदार्थों, चेतन वस्तु हमारी आत्मा के भी वो स्रोत हैं। तो ये दूसरा कारण हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान क्यों हैं, क्योंकि वो हम सब आत्माओं के स्रोत हैं। सृष्टि के साथ साथ हम सब आत्माओं के स्रोत हैं भगवान। इसलिए पूरी सृष्टि और हम सब आत्माएं इस सृष्टि के अंदर, हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या है, उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, और सब हम भृत्य हैं, सेवक हैं उन स्वामी के, वो हमारे असली मालिक, क्योंकि वो स्रोत हैं हमारे। और हमसे ऊपर हैं 33 करोड़ देवता, हमारे नीचे हैं ये पंच महाभूत, जिनके ऊपर हमने अपना ईश्वरत्व जमाया है, ये पंच महाभूत के ऊपर। तो पंच महाभूत को लेकर हम आत्माएं क्या क्या कुछ नहीं बना रहे, जैसे कि ये माइक्रोफोन, ये पूरा बिल्डिंग, ये हॉल पंच महाभूत से बना है। तो हमने पंच महाभूत लिया और पंच महाभूत लेकर हमने हमारे लिए, हमारे भोग के लिए क्या कुछ नहीं बनाया। तो जो जड़ वस्तु है पंच महाभूत, इनके ऊपर हैं हम आत्माएं, और हमारे ऊपर कौन है, देवतागण। कर्मणा दैव नेत्रेण, तो जो दैव नेत्र है, ये सारे जो देवता हैं कितने हैं, 33 करोड़ देवता हैं। और क्यों हैं इतने सारे देवता, क्योंकि हमारे हरेक कर्म, हमारी हरेक इच्छा के ऊपर निरीक्षण रखे हैं ये एक एक देवता। हमारे आंखों के लिए एक देवता है, हम अपनी आंखों से, कल हम चर्चा कर रहे थे, क्या देखते हैं वो सब नोट होता है, वो अधिष्ठात्रा जो देव हैं, देवता हैं, वो नोट करते हैं कि ये व्यक्ति अपनी आंखों से क्या देख रहा है। हमारे नासिका से हम क्या सूंघते हैं वो भी सब नोट होता है। इसका भी एक कंट्रोलर है, नियंत्रक है। हम हमारे कानों से क्या सुन रहे हैं, इसका भी एक नियंत्रक है। हम हमारी जिह्वा से क्या बोलते हैं और क्या खाते हैं, इनके भी देवता हैं जो सब नोट करते हैं कि क्या प्रजल्प बोला, कितना बोला, फालतू फिजूल की बातें, और क्या फालतू फिजूल की बातें और वस्तु खाई, ये सब नोट होता है, देवता नोट करते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की सरकार में ये सारे 33 करोड़ मंत्री हैं, ये 33 करोड़ देवता कौन है, मंत्री के समान। और प्रधानमंत्री कौन है, भगवान श्री कृष्ण इन सब के प्रधानमंत्री हैं वो, और उनकी सरकार में ये सारे मंत्रीगण, इन सबको इनका विभाग, इनका डिपार्टमेंट दिया गया है। इंद्रदेव, उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, वर्षा, वर्षा का डिपार्टमेंट है इंद्र का डिपार्टमेंट। सूर्य इलेक्ट्रिसिटी, जैसे महाराष्ट्र में है MSCB, तो वैसे भगवान श्री कृष्ण की सरकार में सूर्यदेव वो इंचार्ज हैं, मंत्री हैं सब जगह पर अपनी रोशनी फैलाने के। वाटर डिपार्टमेंट, जल विभाग, जल विभाग के अधिष्ठात्रा देवता कौन है? वरुण देव, झूलेलाल वरुण देव वो हैं अधिष्ठात्रा देव ये जल विभाग के। और फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके कौन हैं? कुबेर जी। और डिफेंस, डिफेंस डिपार्टमेंट के कौन हैं? दुर्गा देवी, दुर्गा देवी। तो ऐसे 33 करोड़ देवता हैं अलग अलग, ये जो विभाग हैं। भगवान चाहते हैं कि जो पूरी सृष्टि, ये पूरी सृष्टि कार्यरत कैसे रहे, तो वो है प्रधानमंत्री और ये सारे 33 करोड़ देवता। परंतु हम अज्ञानवश क्या समझ बैठे हैं कि ये जो मंत्री हैं, ये मंत्री ही भगवान स्वयं। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा एक मंत्री है जो मुझे सब कुछ दे रहा है मेरे भरण पोषण के लिए, तो मेरा जो जो भी कुल देवता या कुल देवी जो कोई है, तो मेरे भरण पोषण के लिए जो कुछ मुझे इस देवी या इस देवता से मिल रहा है, तो ये ही भगवान स्वयं। ये नहीं जानते हुए, जैसे कि अकबर के राज्य में एक साधारण सा नागरिक, वो उसने इच्छा की कि मैं कुछ ऐसे व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूं जो सर्वोपरि है, जो सर्वगुण संपन्न है। तो ये साधारण से नागरिक ने, इसने उसके गांव का जो मुखिया, गांव के मुखिया की सेवा करना शुरू की। तो गांव का मुखिया गांव का सर्वोपरि, तो गांव का सर्वोपरि था वो मुखिया, तो इसलिए इसे लगा कि ये सर्वोपरि है तो इसकी सेवा मुझे करनी चाहिए। तो उस मुखिया की सेवा में वो लग गया, परंतु देखा कि मुखिया हर महीना सारे कागज गांव के ले जाकर वो कहीं गांव से बाहर चला जाता था। एक दिन पूछा इस नागरिक ने इस मुखिया से कि तुम कहां जाते हो हर महीना? तो ने कहा क्या? कह रहे भाई जो राज्यपाल है वो राज्यपाल को सब कुछ लेखा जोखा दिखाना पड़ता है, महीना में गांव में क्या हुआ सारा कर देना पड़ता है। राज्यपाल ये कौन है? नागरिक ने पूछा। अरे राज्यपाल वो मेरा बॉस है, तुम्हारे ऊपर भी कोई है? अरे बहुत लोग हैं मेरे ऊपर। कौन है ये राज्यपाल? कौन है? तुरंत उस राज्यपाल को ढूंढा इस व्यक्ति ने और अब उस राज्यपाल की सेवा में लग गया। तो देखा क्या कि ये राज्यपाल भी अपने सारे कागज पत्र ले जाकर अकबर की तरफ जाता था, अकबर के महल में, अकबर को सब कुछ दिखाने के लिए। तभी से समझ में आया कि ये राज्यपाल भी सर्वोपरि नहीं है, इसके ऊपर भी कोई है, ये अकबर नाम का व्यक्ति। तो फिर अंततः अकबर के पास गया और पूछा कि इस पूरे राज्य में तुमसे बड़ा कोई है? नहीं। तो फिर हां तुम्हारी सेवा मैं करूंगा। तो अकबर की सेवा में लग गया। और एक दिन हुआ क्या कि बादशाह अकबर वो अपने महल में आने से पहले नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ते हुए अल्लाह अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। वो नमाज पढ़ते हुए वो अल्लाह को पुकार रहे हैं तो ये इसने देखा कि ये महल में आने से पहले कहीं और गए और वहां जाकर हाथ पसारे हुए ऐसे, तो पूछा कि आपने कहा था कि आपके ऊपर कोई नहीं, तो ये किसके सामने आपने हाथ पसारा है? तो अकबर ने कहा कि अरे उन अल्लाह के सामने हम सब भिकमंगे, हम सब कौन भिकमंगे, और हम सबको उनके सामने अपना हाथ पसारना पड़ता है। तब उसने पूछा कि क्या इनके ऊपर कोई है? तो अंततः वो भगवान तक पहुंचा और तब उसे समझ में आया, क्योंकि अकबर का राज्य था आगरा की तरफ और आगरा के निकट है श्री ब्रजभूमि ब्रजमंडल। तो अंततः जब वो ब्रजमंडल में पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण इनके विषय में जब उसने जाना, तब उसे समझ में आया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि वो श्याम सुंदर कृष्ण वो सबके स्रोत हैं। तो विशेष रूप से हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो 33 करोड़ देवता हैं, ये सब मंत्रियों के समान हैं और मंत्री प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को यदि हम लें, जो कि सारे देवताओं के मुख्यमंत्री, मंत्रियों में मुख्यमंत्री ब्रह्मा जी, तो ब्रह्म विमोहन लीला जो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जिसका वर्णन है, ब्रह्मा जी वो एक दिन भ्रमित हो गए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर, जो कि मुख्यमंत्री हैं 33 करोड़ देवताओं के। ब्रह्मा जी, उनका ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा है, तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परखना चाहा एक दिन। तो उन्होंने गोपों को, गायों को, बछड़ों को छिपा लिया परखने के लिए, कि देखते हैं कि ये इन गोपों के साथ बैठे हुए ये जो कृष्ण हैं, ये वही कृष्ण हैं जिनको मैंने पुकारा था, जो आए थे इस धरती का भार नाश करने के लिए। तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण जान गए कि ब्रह्मा जी मुझे परख रहे हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सबक सिखाया, तो ब्रह्मा जी यहां पर अपनी स्तुतियां बोल रहे हैं। जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम्, जयति जयति वृष्णि वंशः प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशः मुकुंदः। कि जयकार हो हे कृष्ण आपका, जो देवकी के नंदन बनकर आए हो। जयति जयति वृष्णि वंशः प्रदीपः, जयकार हो आपका जो कि वृष्णि वंश, इसके प्रदीप आप बने। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, आपके इतने कोमल अंग, जयकार हो आपके इस विग्रह का। जयति जयति पृथ्वी भार नाशः मुकुंदः, जयकार हो आपका जो पृथ्वी का भार नाश करने के लिए आए हो और जो आप मुकुंद हो। मुकुंद का अर्थ क्या है? कि जो सबको मुक्ति प्रदान करे, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, ये है मुकुंद। और इंद्र, इंद्र गोवर्धन लीला, ये पूरी गोवर्धन लीला भगवान ने गोवर्धन धारण किया क्यों? एक कारण था, क्योंकि इंद्र, इंद्र स्वयं भ्रमित हो चुके थे और इंद्र पूरे ब्रज मंडल को विध्वंस करना चाहते थे। तो इंद्र को सबक सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन को धारण किया। एक दिन मन इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धारियो, नाम पढ़ियो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम, नाम पढ़ियो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। एक दिन मन इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो,
एक दिन मन इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो,
एक दिन मन इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो,
एक दिन मन इंद्र को मारियो,
और हरि
नख ऊपर गोवर्धन धार्यो,
बोलो नाम पढ़ियो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम,
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 राधे
श्याम श्याम श्याम,
राधे श्याम श्याम श्याम,
राधे
श्याम श्याम श्याम,
राधे श्याम श्याम श्याम।
एक दिन मान इंद्र को मारियो, बहुत मान सम्मान इंद्र को मिला हुआ था, अमरावती नगरी में सोमरस पीते हुए अप्सराओं के मध्य इंद्र ने जब देखा कि यहां पर कुछ ब्रजवासी, एक गांव के रहने वाले गांव वाले, वो मेरी पूजा रोक रहे हैं, और वो भी किसके कहने हेतु, एक गोप एक ग्वाला, तो इंद्र अपने ऐश्वर्य में इतना भ्रमित हो गया कि इंद्र के मुख्यमंत्री के भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्री कृष्ण अब जो ग्वाला के रूप में लीला कर रहे हैं उन्हें सर्वसाधारण इंद्र ने माना, और संवर तक बादलों को बुलाकर उस ब्रजमंडल को विध्वंस करने के लिए कहा। तब भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पर, बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर भगवान ने गोवर्धन धारण किया। इसके पश्चात यहां पर हम देखते हैं कि इंद्र वो समझ गए कि मैं आग से खेल रहा था, तो इंद्र आकर, फिर इंद्र सुरभि गाय और ऐरावत अपने हाथी को लेकर आते हैं, और जैसे आप देख रहे हो यहां पर भगवान श्री गोविंद का अभिषेक इंद्र ने किया। तो ये सारे प्रमुख देवता हैं, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, वरुण, ये सारे प्रमुख देवता हैं, और ये सब नतमस्तक हैं किसके, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो ये एक कारण है कि भगवान सभी देवताओं के स्रोत हैं। अहम आदिर ही देवानाम, भगवान ने कहा है, अहम आदि ही देवानाम, सभी देवताओं के आदि स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण। इतना ही नहीं, दिल थामे बैठिए या देखिए, भगवान सभी विष्णुओं के स्रोत भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ये अवतारी हैं, और जितने सारे अवतार हुए हैं वो सारे अवतार भगवान श्री कृष्ण से ही उद्धृत हुए हैं। इसलिए सात्वत तंत्र उपनिषद में कहा गया है, विष्णुस्तु त्रिणि रूपाणि, जो तीन विष्णु हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सारे विष्णु जो हैं इन भगवान श्री कृष्ण के केवल अंश और कला हैं, वो हैं इनके स्रोत। आप लोगों में से कई लोग थोड़ा आश्चर्य कर रहे होंगे इस बात को सुनकर, परंतु श्रीमद् भागवत और सारे उपनिषदों का ये कहना है कि भगवान श्री कृष्ण, हालांकि वो जब आते हैं इस धरती पर तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के द्वारा ही आते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु वो हैं जिनसे सारे ब्रह्मांड उद्धृत होते हैं और उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु के पश्चात है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि हर एक परमाणु में, अणु परमाणु में, हमारे हृदयों में परमात्मा के स्वरूप, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। और उन्हीं से, क्षीरोदक्षाय विष्णु से सारे अवतार, जितने सारे मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिंह, सारे जितने भी अवतार हैं, ये उन क्षीरोदक्षाय विष्णु से उद्धृत होते हैं। तो वो भगवान जो कि इन महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के स्रोत हैं, जब वो इस धरती पर आते हैं अपनी लीला करने हेतु, तो वो भी अपने नियमों का पालन करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे देखने में आता है कि विष्णु के अवतार हैं। जैसे कोई रेल मंत्री जब रेल यात्रा करता है तो वो भी एक टिकट खरीद कर जाता है, हालांकि वो रेल मंत्री है। वैसे ही भगवान, हालांकि सभी विष्णुओं के स्रोत हैं, परंतु जब भगवान इस धरती पर आना चाहते हैं तो वो अपने नियमों का पालन करते हैं, और इसलिए वो विष्णु के अवतार बनकर आते हैं, साथ साथ वो उन विष्णु के स्रोत भी बने रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में गाते हैं, दीपा चिरे वही दशांतरम आप उपेत्य, कि जैसे आप यदि एक मोमबत्ती को लो, जली हुई मोमबत्ती, और उस जली हुई मोमबत्ती से और 10 जली हुई और 10 मोमबत्ती को जलाओ तो कितनी मोमबत्तियां हो जाएंगी? 11, और सब एक समान जली हुई हैं, परंतु फिर भी वो जो पहली मोमबत्ती थी वो स्रोत थी बाकी 10 मोमबत्तियों का। तो हालांकि ये सारे विष्णु और इनके अवतार इस भौतिक संसार में आकर लीला करते हैं, परंतु इनके स्रोत हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण इनके भी स्रोत हैं। और विष्णु पुराण में भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्ययश्चैव षण्णं भग इतिंगण। भगवान, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? भग का अर्थ है ऐश्वर्य। ये सारे जो ऐश्वर्य हम देखते हैं इस भौतिक संसार में कुछ लोगों के पास हैं, जैसे सुंदरता, यश, शक्ति, ज्ञान, ये सारे ऐश्वर्य कहे जाते हैं। तो कहा गया कि ये सारे जो ऐश्वर्य हैं ये छह हैं, ये षड ऐश्वर्य जिसे कहा गया है, और भगवान उन्हें कहते हैं जो इन ऐश्वर्यों को संपूर्णतः धारण करे। संपूर्ण ऐश्वर्य अर्थात संपूर्ण संपत्ति जिस व्यक्ति के पास हो, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य। अब हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में लोग इन ऐश्वर्यों के पीछे भाग रहे हैं। धनवान बनना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, यशस्वी बनना चाहते हैं, ज्ञानवान बनना चाहते हैं, और यहां तक कि वैराग्य। कई बार इन सब से वैराग्य ये भी कोई व्यक्ति ले लेता है तो उसका ऐश्वर्य बढ़ जाता है। तो जो विरक्त हैं वो ज्यादा ऐश्वर्यशाली हो रहे हैं, परंतु भगवान ये छह ऐश्वर्यों को भग कहा गया है, और जो संपूर्ण तरीके से इन ऐश्वर्यों को धारण किए हैं वो हैं भगवान। जैसे जो धन को धारण करता है तो उसे क्या कहते हैं? धनवान। जिसके जीवन में बहुत भाग्य लिखा हुआ है उसे क्या कहते हैं? भाग्यवान। जिसके अंदर बहुत शक्ति है उसे क्या कहते हैं? शक्तिमान या शक्तिवान। तो उसी प्रकार से ये छह ऐश्वर्य जो संपूर्ण तरीके से धारण किए हैं और वो भी एक साथ, ऐसा नहीं कि कुछ एक ऐश्वर्य कुछ एक समय। जैसे कोई व्यक्ति यदि बहुत सुंदर है तो जरूरी नहीं कि वो धनवान भी है। रूपवान होने के साथ साथ धनवान होना ये जरूरी नहीं, धनवान होने के साथ साथ रूपवान होना ये भी जरूरी नहीं। जैसे यदि कोई बहुत रूपवान है कोई व्यक्ति, उसे भेंट या प्राइज दी जाती है मिस यूनिवर्स, क्या कहते हैं उसे, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुंदरी, विश्व सुंदरी। तो विश्व सुंदरी, और सब जगह पर उसका फोटो होता है, विश्व सुंदरी है, उसे मुकुट पहनाया जाता है और गुणगान होता है। परंतु जो भी ये विश्व सुंदरी हो उसे किसी कॉकरोच के सामने खड़ा कर दो, तो क्या वो कॉकरोच इस विश्व सुंदरी को देखकर उछलेगा? अरे विश्व सुंदरी, तुम्हारा दर्शन आज मुझे हो रहा है, क्या मेरा सौभाग्य विश्व सुंदरी मेरे सामने। एक कॉकरोच, उसके सामने यदि वो विश्व सुंदरी खड़ी हो जाए तो कॉकरोच क्या देखेगा? अरे ये कौन पूतना जैसी खड़ी है सामने। तो इस भौतिक संसार की जो सुंदरता है वो सब जगह पर समान रूप से नहीं होती। अब वो कॉकरोच, वो जब अपनी प्रियतमा को देखता है, मिस्टर कॉकरोच जब मिसेस कॉकरोच को देखता है, तब वो उछलने लगता है, अरे तुम हो विश्व सुंदरी, कहां इसको मुकुट पहनाया जा रहा, निकालो इसे पहनाओ, देखो कितना चिलकता हुआ बदन है इसका, देखो कैसे जब ये मेरी प्रियतमा जब उड़ती है तो क्या इसकी मतवाली चाल है। तो एक कॉकरोच केवल सुंदरता देखता है उसी की योनि में, और क्या हम जब इस कॉकरोच को देखते हैं तो क्या हम इसका फोटो निकालते हैं कि देखो कितना सुंदर है ये कॉकरोच। घरों में जब आप कॉकरोच देखते हो तो फोटो निकालते हो, उसको फ्रेम करके रखते हो किचन में। कॉकरोच को देखते हो तो क्या करते हो, पहले तो घर से भाग जाते हैं बाहर, नहीं तो वो लेकर बेगौन फ्रेम मारो उसे उधरी। तो कॉकरोच यदि विश्व सुंदरी को देखे तो वो बेगौन स्प्रे लेके आए, मारो इसके ऊपर। कौन पूतना जैसी खड़ी हो गई सामने। तो यहां पर यदि हम एक एक ऐश्वर्यों को लें तो एक एक ऐश्वर्य भगवान के अंदर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो संपूर्ण तरीके से व्याप्त है। जैसे कि संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य का अर्थ है कि जितनी भी संपत्ति, जितना भी धन इस भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में, जहां कहीं पर भी जितनी भी संपत्ति है वो संपत्ति किसकी है, भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सब कुछ मुझसे आ रहा है। तो यदि सब कुछ उनसे आ रहा है तो सब कुछ उनका हुआ, तो हम कौन हैं फिर। हमने अपना बंगला बनाया होगा, हम अपने घर में रहे होंगे और अपने नाम पर अपना बंगला होगा, मेरे नाम पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। अरे हम सब भाड़ोत्री हैं और असली मालिक हैं वो, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे क्या हम हमारे साथ उस मकान का ईंट पत्थर लेकर आए थे। जब हम पैदा हुए थे तो ईंट पत्थर लाए थे कि भाई मेरा मकान मुझे बनाना है तो ईंट पत्थर मेरी होनी चाहिए। ये ईंट पत्थर ली कहां से हमने, इस पृथ्वी से। और ये पृथ्वी कहां से आई है, भगवान से। जैसे भगवान ने कहा सारे ये जो पंचमहाभूत हैं मैं स्रोत हूं, तो भगवान से ये सब पदार्थ उद्धृत हुए हैं और इनको केवल इकट्ठा कर हम इस पर मूल्य लगा देते हैं और कहते हैं कि ये धन मेरा, ये धन तुम्हारा, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये तुम्हारा। अरे हम क्या लाए थे हमारे साथ, कुछ नहीं, नंग धड़ंग पैदा हुए थे, एक धागा भी हमारे शरीर पर नहीं था, और खुद भी हम पैदा हुए तो जानते भी नहीं कि कौन है, कहां से आए हैं और किस परिवार में हैं। अबोध जाता है, अज्ञान में हमारा जन्म होता है। परंतु क्योंकि भगवान कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं से उद्धृत हुआ है, इसलिए संपूर्ण ऐश्वर्य उन्हीं का है। और भगवान ने दिखाया, भगवान जब द्वारका के द्वारकाधीश बने तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य, अपनी संपत्ति का एक नमूना हम सबको दिखाया। भगवान ने कितनी रानियों से शादी की, हाँ 16,108। भगवान ने 16,108 रानियों से शादी की। कोई है माइका लाल यहां पर, जो भगवान की बराबरी कर सके, या जो तथाकथित भगवान घूम रहे हैं उन्हें पकड़ो अरे एक के पल्लू बांध दो फिर देख लो सारी भगवत्ता निकल जाएगी। 16108 तो दूर की बात है। एक को संभालना इतना मुश्किल हो रहा है आजकल, है कि नहीं? हाँ, और आपको भी संभालना मुश्किल हो रहा है कि नहीं? परंतु भगवान ने ऐसा नहीं कि भगवान ने जब 16108 रानियों के साथ शादी की तो पहले पुरोहित को बुलाया गया, फिर कुंडली मैच की गई कि देखते हैं कुंडली मैच होती है कि नहीं। अंग्रेजी में उसे कहते हैं हॉररस्कोप। तो वो मेल हुआ कि नहीं, और ऐसा नहीं कि वो पटरानियों ने पहले जाकर देखा, भाई जाकर देखते हैं द्वारका में, द्वारका के बैंक में कुछ कितना बैलेंस है इन द्वारकाधीश। तो भगवान ने 16108 रानियों के साथ विवाह किया और 16108 महल खड़े किए उनके लिए। ऐसा नहीं, और ऐसे ऐसे महल, इन महलों का वर्णन किया गया है कि इन महलों के अंदर संगमरमर और रत्न जड़ित खंबे, इन सब के महल बने हुए थे। और ऐसा नहीं कि भगवान जयपुर से मार्बल मंगा रहे हैं और फिर अब वहां पर कटाई हो रही है और फिर उसका रेट फाइनल कर रहे हैं, भाई सस्ते से सस्ता मार्बल लाना। हर एक महल उत्कृष्ट पदार्थों से बना हुआ और हर एक रानी के लिए अलग महल। अब देखिए, जैसे हमने चर्चा की कि जब विवाह होता है तो एक मकान दंपति को लेने के लिए सारा दम निकल जाता है, दंपति का सारा दम निकल जाता है केवल एक मकान एक जीवन में बना लें रहने के लिए। और फिर लोग गाते हैं, ये घर अपना सुंदर सा जिसमें हम दोनों और फिर हमारा एक और फिर क्या कहने। तो भगवान, उन्होंने हरेक पटरानी के लिए एक विशेष उत्कृष्ट महल निर्माण किया। और इतना ही नहीं, भगवान ने 16108 रानियों के लिए 16108 महल कितने समय में एक रात्रि की अवधि में। सभी मथुरा में थे और पूरे द्वारका नगरी का निर्माण भगवान ने केवल एक रात्रि में कर दिया, पूरी द्वारका नगरी। और भगवान का जो महल था सुधर्म उसका नाम था, उस महल की टेक्नोलॉजी के बारे में कहा गया है कि ये जो सुधर्म महल था भगवान का, कोई भी व्यक्ति इस महल में प्रवेश करता, यदि वो प्यासा होता तो उसकी प्यास बुझ जाती, भूखा होता तो उसकी भूख मिट जाती। हर एक महल में ये गुण था। और इतना ही नहीं, यदि कोई गर्मी महसूस कर रहा है तो केवल उसी के लिए उस महल में एसी ऑन होता। और यदि कोई ठंडा महसूस कर रहा है तो केवल उसी के लिए उस महल में गर्माहट पैदा होती। ये भगवान की टेक्नोलॉजी केवल उनके एक महल में। तो नारद मुनि ने जब सुना कि अरे भाई भगवान श्री कृष्ण ने 16108 रानियों के साथ विवाह किया, तो ये कैसे एक 16108 रानियों के साथ रह पा रहे हैं, थोड़ा जाकर देखें। सब जगह पर खबर फैली है कि 16108 महल ये सारे निर्माण हुए हैं। तो नारद मुनि जाकर देखने के लिए गए। तो वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले महल में भगवान श्री कृष्ण पहली रानी के साथ वार्ता कर रहे थे, बैठे हुए वार्तालाप हो रहा था। और वो रानी सोच रही थी कि क्या सौभाग्य है मेरा, क्या सौभाग्य है मेरा कि ये यहां पर भगवान केवल मेरे ही साथ बैठे हैं और मेरे ही साथ समय बिता रहे हैं। तो वो रानी सोच रही थी कि बाकी सारी रानियों के ऊपर मुझे थोड़ा तरस आ रहा है, तरस आ रहा है कि वो अकेली प्रतीक्षा में है कि कब उनके पति जाएंगे, परंतु ये तो मेरे ही साथ बिता रहे हैं पूरा समय। और नारद मुनि भी यही सोच रहे थे, वो भी यही सोच रहे थे कि अरे इतने समय तक इसी के साथ हैं तो बाकी तो फिर धरना लग देगी। परंतु जब नारद मुनि दूसरे महल में गए तो वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर देखते हैं कि कृष्ण दूसरी रानी के साथ बैठकर भोजन खा रहे हैं। तो नारद मुनि थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, भाई मेरे आने से पहले इधर कैसे पहुंच गए ये। फिर से भागे पहले महल में, वहां पर जाकर देखा तो भगवान वार्ता कर रहे हैं, बैठे हैं। फिर से इस महल में भागे, यहां पर देखा कि भगवान भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और भगवान जान गए ये नारद मुनि जो यहां वहां भाग रहे हैं क्या सोचते हुए भाग रहे हैं। तो भगवान ने नारद मुनि से कहा, आओ तुम भी भोजन करो, नारद थक गए होगे भागते हुए यहां वहां। तो नारद मुनि ने हर एक महल में जाकर देखा तो भगवान हर एक रानी के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठे हुए अलग अलग लीला कर रहे हैं। किसी के साथ वार्ता चल रही है, किसी के साथ भोजन, किसी के साथ भगवान कुछ खेल रहे हैं, किसी के साथ भगवान घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तब नारद मुनि इन्हें लगा कि ये भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं यही कर सकते हैं। अरे यदि किसने 16108 रानियों के साथ शादी भी कर ली, मान लो किसी ने कर भी ली, उसकी हालत क्या होगी उस बेचारे की, क्या हालत होगी। जैसे पाश्चात्य देश में लोग जो हैं वहां पर वो थोड़ा ये संख्या तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो कैसे करते हैं, किसी के साथ विवाह करते हैं, 2 साल बाद तलाक, फिर दूसरे के साथ विवाह, फिर 2 साल बाद तलाक, खैर 2 साल मैंने ज्यादा बोल दिया, फिर तलाक, फिर विवाह, फिर तलाक, फिर विवाह। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं, वहां की जो संस्कृति है, लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। वहां पर एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी हॉलीवुड की, तो इस अभिनेत्री ने 14 पतियों से शादी की और तलाक भी दे दिया। और जो 14वां पति था, वो 14वां पति उसे पता नहीं कि उसने दूसरी बार शादी की उससे, वो पहले दूसरा पति बना था इसका और ये भूल गई। तो इतनी बार इसने विवाह किया और तलाक विवाह तलाक विवाह तलाक, तो कोर्ट में जाना पड़ता है ना मैरिज सर्टिफिकेट के लिए और वो डाइवोर्स के लिए। तो कोर्ट में ये इतनी बार चली गई कि कोर्ट वाले परेशान। तो जब ये 14वीं बार गई कोर्ट में तो कोर्ट वालों ने बिठाया और कहा कि भाई हम आपको एक परमानेंट सर्टिफिकेट दे देते हैं, और सर्टिफिकेट के ऊपर लिख दिया टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न, ये ले जाओ और अब ये दिखाते रहो जितनी भी शादियां करनी है या जितनी भी शादियां तोड़नी है करते रहो। जब हम अमेरिका में थे वहां पर एक कार्टून हमें दिखाया गया कि पाश्चात्य देश में जो विवाह और तलाक ये सब जो हो रहा है इतना सब कुछ, उसका एक कार्टून एक पेपर में आया था। तो कार्टून में क्या दिखाया कि पतिदेव एक तरफ खड़े हैं और उनकी पत्नी दूसरी तरफ खड़ी हैं, और पति और पत्नी के बीच में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक कार्टून ऐसा था, पति एक तरफ पत्नी एक तरफ बच्चे बीच में खेल रहे। तो पति पत्नी से कहते हैं, वहां पर उनको हनी कहा जाता है, हनी शहद। तो पति जो है अपनी पत्नी से कहता है कि अरे प्रियतमा देखो क्या सुंदर दृश्य है, देखो कितना सुंदर दृश्य है, बच्चों की तरफ कर कर पति कह रहा है अपनी पत्नी से, देखो देखो कितना अच्छा दृश्य है, मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ये वहां की संस्कृति, और ये भारत में भी आजकल, भारत में भी आजकल ये सब कुछ शुरू हो रहा है। परंतु भगवान 16,108 रानियों के साथ जब उन्होंने विवाह किया, उनके लिए 16,108 महल निर्माण किए। ऐसा नहीं था कि भगवान को सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता लेकर ऑफिस की बैग उठाकर भागना पड़ता था, भाई 16,108 महलों को संभालना है तो नौकरी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि भगवान 9 से 5 नौकरी पर जाते थे और फिर तनख्वाह पगार लेकर फिर सबका बिल चुकता करना, हर एक महल का इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर का बिल ये सब भरने हुए भागते रहते थे, नहीं। तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया द्वारकाधीश के रूप में, संपूर्ण धनवान, संपूर्ण संपत्ति के स्रोत, संपूर्ण बल। संपूर्ण बल हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में भी लोगों के पास कुछ बल है, जैसे ये ओलंपिक्स में लोग अपना बल दिखाते हैं कि नहीं, आकर कुछ बड़ा बड़ा वजन उठाएंगे और सभी लोग चिल्लाते रहते हैं जब ये वजन उठाने आते हैं, हाँ आओ आओ, सभी लोग चिल्लाते हैं तुम उठा पाओगे उठा पाओगे, ये जिन्हें वेट लिफ्टर कहते हैं वजन उठाने आते हैं। तो इनको यदि आप देखो तो ये जब वो वजन उठाने आते हैं तो एक तो सबसे पहले इनके शरीर को आप देखोगे तो थोड़ा ऐसे भयानक दिखते हैं इनके शरीर, और फिर ये अपने कसरत करते हुए पहुंचते हैं वजन उठाने के लिए, और जैसे ही वो वजन को उठाते हैं तो सारे जो नौ द्वार हैं शरीर के, वो सारे नौ द्वार ये आंख नाक कान सब जगह में से धुआं निकलना शुरू होता है, वो भी वजन उठा रहा है, और दो सेकंड के लिए वो वजन उठा करो सभी बोलते हाँ ऊपर करो, और फिर ऊपर करते हैं और फिर पटका नीचे, हाँ गोल्ड मेडल लाओ कहां पर है, कितने सेकंड के लिए? कुछ 2-3 सेकंड के लिए वो थोड़ा सा वजन उठाने पर उन्हें गोल्ड मेडल मिलता है कि कितनी शक्ति कितना बल है। परंतु भगवान, उन्होंने क्या उठाया? श्री गोवर्धन। और गोवर्धन, इसके विषय में कहा गया है कि गोवर्धन सैकड़ों मील लंबा, हिमालय पर्वत से सैकड़ों मील लंबा, और कितने ऊपर, कितनी ऊंचाई थी उस समय गोवर्धन की? 80,000 योजन। एक योजन कितना होता है? 8 मील लंबा। इतना बड़ा गोवर्धन, इसे भगवान श्री कृष्ण उठाए कैसे थे? अपनी ये छोटी सी उंगली, बाएं हाथ की, वो भी लोग कहते हैं ना, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो मेरे ख्याल से ये मुहावरा भगवान श्री गोवर्धन, भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला से शुरू हुआ होगा कि भगवान ने बाएं हाथ का खेल समझा इसे। और ये जो वेट लिफ्टर होते हैं, ये कितना दिन रात वजन उठा उठा कर फिर ये कुछ शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जब जन्मे थे मथुरा में तो मथुरा के किसी व्यायामशाला में जाकर वजन उठाते थे कि भाई जब मैं 7 वर्षीय होऊंगा तो मुझे उठाना होगा गोवर्धन, तो अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लेता हूं। नहीं, तो भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और कितने समय तक? कुछ सेकंड के लिए नहीं, 7 दिन 7 रात भगवान गोवर्धन को धारण किए हुए थे। तो भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गोवर्धन धारण कर। चाणूर और मुष्टिक, कंस ने चाणूर और मुष्टिक को लगाया था भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। तो भगवान जब चाणूर और मुष्टिक, जैसे यहां पर आप देखो, चाणूर और मुष्टिक इतने बड़े मुष्टंडे, इतना बड़ा इनका शरीर, परंतु भगवान, उन्होंने अपना शरीर उनकी तरह बड़ा नहीं बनाया। भगवान अपने श्याम सुंदर स्वरूप में ही रहे, परंतु भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन उसी श्याम सुंदर स्वरूप के द्वारा ही दिखाया। जैसे कल हमने इसकी चर्चा की, भगवान की हथेली भक्तों के लिए एक कमल की पंखुड़ियों के समान या मक्खन के समान मृदु, वही हथेली को जब भगवान पंजे में बांधते थे मुट्ठी में, तो भगवान ने उसी मुट्ठी को कंस के ऊपर लगाया। और कंस वही भगवान का हाथ जो भगवान अपना वरद हस्त भक्तों के ऊपर रखते हैं, कंस के लिए वज्रपात के समान लगा, मृत्यु के समान भगवान का वो पंजा कंस को लग रहा था। तो भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपने बल का प्रदर्शन इन लीलाओं द्वारा किया। संपूर्ण यश का प्रदर्शन भगवान कहां किए? भगवान वृंदावन में केवल वो ब्रजवासियों में प्रसिद्ध नहीं थे, वृंदावन के हरेक जीव, यहां तक कि हिरण, सारे गौ, तोते, मोर, सभी जीव भगवान से इतना आकर्षित रहते और भगवान सभी इन जीवों से वार्तालाप करते। जैसे कि हमने वो उदाहरण दिया कि यदि कोई विश्व सुंदरी कॉकरोच के सामने आ जाए तो क्या वार्तालाप होगा कॉकरोच से, परंतु भगवान इतने ज्यादा आकर्षक कि भगवान इस समुदाय में भी, इन प्राणियों के समुदाय में भी भगवान यशस्वी थे। इसलिए जब भगवान वृंदावन में विचरण करते थे तो भगवान के इर्द गिर्द भंवरे भंवरे मंडराते थे। क्यों भंवरे मंडराते थे इसकी हम चर्चा करेंगे, भगवान का सौंदर्य देखकर। तो भगवान का सौंदर्य आगे आने वाला है और भंवरे क्यों मंडराते थे। परंतु यहां पर भगवान भंवरों में, गौओं में, हिरणों में, मोर, तोते, ये सारे प्राणियों में भगवान अपना यश फैलाए हुए थे। और भगवान का यश एक और तरीके से हम जान सकते हैं। भगवान ने ऐसी ऐसी लीला की जैसे कि माखन चोर, भगवान ने माखन चोर की लीला की। अब देखिए, भगवान ने माखन चोर की लीला की और भगवान माखन चोर की लीला करने के वजह से प्रसिद्ध हुए। अब कोई व्यक्ति जब चोरी करता है तो क्या प्रसिद्ध होता है? क्या उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है जब वो चोरी करता है? परंतु यहां पर भगवान दिखा रहे हैं कि उनका यश इतना है कि यदि वो चोरी भी करें और वो भी किसकी, माखन की। कोई व्यक्ति कहे, अरे भाई कोई करोड़ों रुपयों की चोरी या हीरे जवाहरात की चोरी किए होते तो ठीक है, क्या ये माखन की चोरी। तो भगवान जब चोरी भी करते हैं तो उसके गीत गाए जाते हैं, मैं नहीं माखन खायो, और जो गीत गाते हैं वो धनवान हो गए गीत गाते गाते, उन्होंने अपना जीवन बना लिया ये गीत गाकर उन्होंने अपना करियर बना लिया। तो भाई जिन्होंने ये लीला की फिर वो कितने प्रसिद्ध। तो भगवान यदि चोरी भी करें तो उनका यश कम नहीं होता। तो भगवान का पूजन होता है माखन चोर के रूप में। और यही भगवान जिन्होंने अर्जुन को डांटा फटकारा, क्यों? क्योंकि अर्जुन रण छोड़कर जाना चाहते थे, अर्जुन रण छोड़कर जाना चाहते थे। और भगवान ने कहा, अशोच्यान अन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासुम अगतासुमश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे मूर्ख अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और तुम ये क्षत्रिय के धर्म को छोड़कर भागना चाहते हो। तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, मूर्ख कहा। भगवत गीता में वो श्लोक है। और वही भगवान, उनकी पूजा होती है रणछोड़ राय के रूप में। कहां पर? डाकोर जी। डाकोर मां कौन छे? राजा रणछोड़ छे, बोलते हैं कि नहीं? और लोग वहां पर आकर पूजा करते हैं इन रणछोड़ राय जी का, जिन्होंने अर्जुन को सारी गीता सुनाई डांटते हुए कि तुम रणछोड़ मत बनो। तो कोई व्यक्ति यदि इनको जानेगा नहीं तो कहेगा शायद कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम लगता है। अरे भाई 700 श्लोक किसी व्यक्ति ने किसी को सुनाया केवल इसी हेतु कि ये रण न छोड़े, और भाई खुद के जीवन में इन्होंने अपना एक मंदिर बांध लिया रण छोड़ रहा है। तो देखिए भगवान का यश कि भगवान यदि चोरी भी करें रण भी छोड़ें तो उनका गुणगान होता है। तो इसीलिए वो हैं संपूर्ण यशस्वी, और इस कारण के वजह से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए वो स्वयं भगवान है, संपूर्ण सौंदर्य। भगवान ने अपना सौंदर्य कहां कहां नहीं दिखाया, इसके विषय में यदि हम बोलना शुरू करें तो और 7 दिन आपको आना होगा, वो भी कम पड़ेगा भगवान के सौंदर्य के विषय में। भगवान इतने सुंदर हैं कि बड़े बड़े चित्रकारों ने भगवान की सुंदरता को देख चित्र बनाया और उन्होंने अपना करियर बना लिया, अपना करियर को सुंदर बना लिया भगवान की सुंदरता के चित्र निकालते हुए। बड़े बड़े कवियों ने भगवान की सुंदरता का बखान करते हुए उन्होंने कविताएं रची और वो बड़े कवि हो गए भगवान की सुंदरता की कविता कहते हुए। जैसे कि वृंदावन के एक बहुत ही विख्यात एक बाबा जी हुए जो कि बहुत बड़े कवि थे और उनके जीवन में उनका एक नियम था। नियम यह था कि वो जो भी कविता रचते केवल भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का बखान करने के लिए ही करते। उनकी कविता हर समय केवल भगवान श्री श्याम सुंदर की सुंदरता के लिए ही होती, उसी की रचना वो करते और वो बहुत विख्यात थे। तो एक दिन हुआ ऐसा कि वृंदावन के पास मथुरा, मथुरा के पास आगरा, तो आगरा में एक उर्दू मुशायरा लगाया गया। तो मुशायरा उर्दू भाषा में, तो वहां पर सभी बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े कवि भारत के हर एक कोने से आए मुशायरे में। तो ये जो श्याम सुंदर जी के भक्त, इन्हें भी बुलाया गया। ये जब वहां पर गए तो इनका नियम क्या था कि ये केवल भगवान श्री श्याम सुंदर की ही कविता की रचना करते थे, उनकी सुंदरता की, उनकी सुंदरता का बखान करते हुए कविता की रचना करते, ये इनका नियम। और इस उर्दू मुशायरे का नियम था कि आप जो भी कविता रचें उस कविता की अंतिम पंक्ति क्या होनी चाहिए, काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। ये उस मुशायरे का नियम था कि चाहे आप किसी की भी सुंदरता का बखान करें, अंतिम पंक्ति ये होनी चाहिए, क्या, काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। काफिर का अर्थ क्या होता है उर्दू में, जो नास्तिक होते हैं उन्हें काफिर कहते हैं। तो अब सभी लोग बहुत ज्यादा अपने आप को संकुचित देख रहे थे कि कैसे हम कैसी कविता रचें, अब ये अंतिम पंक्ति होनी चाहिए हर कविता की। तो अब जब इनका टर्न आया हमारे बाबा जी का, तो अब ये सोच रहे थे कि भाई मेरा नियम तो है कि केवल मैं श्याम सुंदर कृष्ण की ही सुंदरता का बखान करता हूं। तो उनको बताया गया चाहे आप श्याम सुंदर जी की सुंदरता का बखान करो या किसी के भी सुंदरता का बखान करो, नियम मुशायरा का क्या है, अंतिम लाइन क्या होनी चाहिए, काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। तो ये गए ठीक है, मैं अपने नियम को भी नहीं तोड़ूंगा और मैं तुम्हारे नियम को भी नहीं तोड़ूंगा, ये चैलेंज उन्होंने लिया और वो गए मंच पर। तो सभी अब जानते थे कि ये श्याम सुंदर जी के अनन्य भक्त हैं और उनके सुंदरता के अलावा ये कुछ नहीं रचते, तो अब ये कैसे कहेंगे, वो लाइन कैसे कहेंगे। तो उर्दू में किसी के केश, सुंदर केशों को क्या कहते हैं, गेशु, गेशु कहते हैं किसी के सुंदर केशों को। और जब किसी के सुंदर केश में जब घुंघरालू केश आ जाते हैं, आजकल लोग ये ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने केशों को घुंघरालू करते रहते हैं, परंतु प्राकृतिक तरीके से जब किसी के केश घुंघरालू केश होते हैं तो उसे उर्दू में कहते हैं लाम। लाम कहते हैं घुंघरालू, घुंघरालू को लाम कहते हैं। तो अब ये जब मंच पर गए तो इन्होंने उस मुशायरे के नियम का पालन करते हुए और अपने नियम का पालन करते हुए अपनी कविता रची और कही। तो उन्होंने कहा लाम गेशु के देख मेरे घनश्याम के, लाम गेशु के देख मेरे घनश्याम के। इसका अर्थ क्या है कि मेरे घनश्याम के लाम गेशु देखो, मेरे घनश्याम के घुंघरालू गेशु देखो, मेरे घनश्याम के घुंघरालू केश देखो, लाम गेशु के देख मेरे घनश्याम के। काफिर है वो जो बंदे नहीं इस लाम के। लाम गेशु के देख मेरे घनश्याम के, काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस लाम के। तो बड़े बड़े कवियों ने भगवान की सुंदरता का बखान अपनी कविताओं में किया है। तो भगवान की सुंदरता ऐसी है कि हमने कहा कि न केवल वृंदावन के ब्रजवासी, न केवल गोप, न केवल गोपियां, बल्कि सारे गौ भवरे भवरे मंडराया करते थे। भगवान जब चला करते थे गोचरण के लिए, जब जाया करते थे तो ये सारे भवरे भगवान के इर्द गिर्द मंडराते। क्यों? क्योंकि ये भवरे हर समय आकर्षित रहते कमल कुमुद से, पंकज से। तो भवरे हर समय पंकज या कमल के इर्द गिर्द मंडराते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अमृत है, वो फूलों का जो अमृत है, वो पाने के उत्सुक इच्छुक रहते हैं ये भवरे। तो ये भवरे जब भगवान श्री कृष्ण को देखते तो इन्हें लगता कि ये कौन सा कमल चल रहा है आज। तो भगवान के मुखमंडल को वो एक कमल के समान, पंकज के समान। इसलिए कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहा है नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय। कुंती महारानी कहती हैं कि हे भगवान, आपका सब कुछ एक कमल के समान है। आपके नेत्र, आपका मुखमंडल, आपके चरण, आपके हस्त, सब कुछ आपका एक कमल के समान सुंदर है। तो ये भंवरे वृंदावन में जब भगवान को बाहर निकला देख वो मंडराते रहते, उन्हें लगता, सब भंवरे एक दूसरे से कहते अरे ये देखो कमल चल रहा है, इतने सुंदर भगवान दिखते कमल के समान। और मोर मोर वो नाचने लगते जब वो भगवान को देखते, क्योंकि मोर क्या सोचते, मोर नाचने कब लगते हैं, जब वो बारिश के बादलों को देखते हैं तो मोर नाचने लगते हैं। तो मोर नाचने लगे क्यों, उन्हें लगा कि ये मेघ श्याम घन श्याम, ये जो मेघ श्याम जैसा कौन चल रहा है आज पृथ्वी पर, आज जो बारिश का जो बादल है, मेघ है, वो आज पृथ्वी पर कैसे आ गया। तो मोर वो देखते हुए नाचने लगते। तो भगवान की सुंदरता अब देखिए, जो इस भौतिक संसार के तथाकथित अपने आप को भगवान कह रहे हैं, थोड़ा चलाओ उनको रास्ते पर, देखते हैं कितने भंवरे मंडराते हैं इनके बगल में। कौन मंडराते हैं जब ये चलते हैं? मक्खी, मच्छर, बैक्टीरिया, ये सारे जीवाणु मंडराते हैं। तो क्या सुंदरता है हमारी इनके सामने, इसलिए इनके सौंदर्य के विषय में यदि हम शुरू करें कुछ कहना तो ये स्वयं भगवान नहीं जान पा रहे कि ये कितने सुंदर हैं। इसलिए ये लीला है कि द्वारका में भगवान ने एक बार अपने स्वयं का प्रतिबिंब फर्श पर देखा तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। स्वयं भगवान आश्चर्यचकित हो गए अपने ही सुंदरता को देखते हुए। अब कई बार हम भी जब अपने आप को देखते हैं आईने में तो हम भी कई बार, अरे क्या आज मैं खेल छवीला, क्या मैं आज दिख रहा हूं, और कई घंटा हम बिता देते हैं आईना के सामने। जैसे ही आईना कहीं पर सामने आ जाए, रास्ते में चलते हुए दुकान में कहीं आईना लगा है तो लोग जैसे ही देखते हैं कि अरे मैं दिख रहा हूं शायद उसमें, तो अपने आप को थोड़ा संवार लेते हैं। और चाहे कितना भी कुरूप से कुरूप व्यक्ति हो, वो अपने में कुछ न कुछ सुंदरता का गुण ढूंढ ही लेता है। अरे चाहे मैं मिस यूनिवर्स न हो, चाहे मैं मिस्टर यूनिवर्स न हो, अरे परंतु अपने घर में तो मिस्टर मिसेज हैं हम। मैं अपने पत्नी के लिए तो मिस्टर यूनिवर्स हो और वो पति के लिए, परंतु भगवान की सुंदरता कोई इसकी तुलना, हालांकि अलग अलग दृष्टांत दिए गए हैं कि भगवान श्याम वर्ण के घनश्याम पंकज की तरह, एक कमल की तरह भगवान, परंतु कहा गया है कि जब एक भक्त जब भगवत धाम जाता है तो सबसे पहले वो भगवत धाम जाकर भगवान से क्षमा मांगता है कि क्षमा करना भगवान, मैंने आपकी सुंदरता की तुलना ये भौतिक संसार के कमल से की, मैंने आपकी सुंदरता इस भौतिक चंद्र से की, आपकी सुंदरता एक भौतिक मेघ से की या बादल से की, कृपया क्षमा करना। तो एक भक्त क्षमा मांगता है भगवान, क्योंकि भगवान की सुंदरता हर क्षण उसकी वृद्धि होती रहती है भगवान की सुंदरता की। इसलिए संपूर्ण सौंदर्य के खान है भगवान, संपूर्ण ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान। ऐसा नहीं कि भगवान केवल माखन ही चोरी करते रहे, ऐसा नहीं कि केवल भगवान ग्वाल बालों के साथ ही खेलते रहे। भगवान ने जो ज्ञान दिया अब तक लोग ये भगवद गीता पर प्रवचन दे देकर अपना जीवन बना रहे हैं, उनका जीवन चल रहा है भगवद गीता प्रवचन दे देकर। तो ये भगवद गीता का जो उत्कृष्ट ज्ञान, इसलिए कहा गया है कि ये जो ज्ञान है, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, कि सभी उपनिषद यदि एक साथ हम रख लें और उन्हें मथें तो ये भगवद गीता उसका सार है। और ये भगवान ने भगवद गीता, ऐसा नहीं कि भगवान अपना भगवद गीता का प्रवचन वो तैयार कर लाए थे कि अर्जुन को गीता का प्रवचन देना है तो थोड़ी तैयारी होनी चाहिए, कौन सा श्लोक कहां पर आएगा 700 श्लोक में से, कौन से अध्याय के बाद कौन सा अध्याय, भगवान को कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। वैसे जैसे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवद गीता के श्लोक भगवान के मुख से, इसलिए तो उसे भगवान का गीत कहा गया है। तो भगवान ने ज्ञान ये प्रदर्शित किया, भगवद गीता का ज्ञान देकर, सारे उपनिषद सारे पुराण सब कुछ भगवान से ही उद्धृत हुए हैं। जो भी ज्ञान इस भौतिक संसार का है सब कुछ भगवान के मुख से ही निकला है। और संपूर्ण वैराग्य, हालांकि भगवान ने अपना सारा ऐश्वर्य अर्जुन को सुनाया और दिखाया, परंतु भगवान बने क्या अर्जुन के? एक ड्राइवर। अपना विश्वरूप दिखाने के पश्चात भगवान एक ड्राइवरी का काम कर रहे हैं अर्जुन के लिए। तो भगवान ने यहां पर भगवान दिखाए कि चाहे मैं संपूर्ण ऐश्वर्यशाली, संपूर्ण बलशाली, संपूर्ण ज्ञानवान, संपूर्ण सुंदर, ये सब कुछ मैं हूं, परंतु इन सब को मैं त्याग सकता हूं एक ही क्षण में अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए। और युद्ध के नियमों के अनुसार, युद्ध के नियमों के अनुसार जब रथी सारथी को कुछ कहना चाहता है तो कैसे कहता है कोई जानता है? पैर से, क्योंकि उसके पास समय नहीं कि वो सारथी को बता पाए कि अब यहां मुड़ो, अब वहां मुड़ो, अब तेज चलो। तो जब रथी सारथी को संकेत देना चाहता है कि बाएं तरफ, दाएं तरफ, तो रथी अपना पैर सारथी के ऊपर मारता है। तो भगवान ऐसे सारथी बने कि अर्जुन के पैरों को अपने ऊपर ले रहे थे। इसे कहते हैं वैराग्य की मूर्ति। भगवान ने यह नहीं दिखाया कि भाई तुम्हें मैंने ज्ञान दिया, तुम्हें सारा ऐश्वर्य दिखाया और तुम मुझे लात मार रहे हो। भगवान एक भक्त, एक भक्त की रक्षा करने हेतु भगवान अपने सारे ऐश्वर्यों को छोड़कर, सभी के सामने, ऐसा नहीं अकेले में, सभी के सामने भगवान अर्जुन के सारथी बने। और ये सारथी का कर्तव्य है कि रोज वो घोड़ों को साफ करे, रथ को साफ करे, और रथी तैयार होने से पहले अपना रथ वहां पर खड़ा करे। तो महाभारत में वर्णन है कि भगवान सुबह अर्जुन से जल्दी उठते और घोड़ों को, रथ को स्वयं साफ कर अर्जुन के तंबू के सामने खड़ा करते, जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को साफ कर मालिक के सामने खड़ा करता है। तो ये भगवान अपने वैराग्य को दिखा रहे थे। सांदीपनि मुनि के आश्रम में, सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान एक ब्रह्मचारी की तरह उन्होंने जीवन बिताया। अरे भाई, वही जो पूरे शास्त्रों के स्रोत हैं, जो सांदीपनि मुनि जो शास्त्र सुने हैं, जो सुना रहे हैं, वो भगवान के ही मुख से निकला हुआ है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान का वैराग्य देखिए, नम्रता देखिए, कि भगवान अपने ही मुख से निकला हुआ ज्ञान सांदीपनि मुनि के मुख से सुन रहे हैं, और वो भी एक गुरुकुल में शिष्य के भांति, एक ब्रह्मचारी शिष्य के भांति। तो भगवान ने अपने वैराग्य का प्रदर्शन इस तरीके से किया। तो इसमें हमें समझ में आता है कि भगवान कैसे भगवान है। ये भी एक लीला है, जब भगवान एक नन्हे से ग्वाले की भूमिका निभा रहे थे, तो नंद महाराज जब घर आते तो माता यशोदा कन्हैया से कहती अरे भाई पिताजी आए हैं, जाकर उनकी चप्पलें लेकर आओ। तो भगवान नंद महाराज की चप्पलों को अपने सर पर उठाए नंद महाराज अपने पिता के लिए वो लेकर आते हैं। तो इसलिए ये भगवान है, क्योंकि सभी ऐश्वर्यों के साथ भगवान अपनी लीला कर रहे थे, और यही एक ऐश्वर्य दिखाने के लिए उन्होंने मृद भक्षण लीला की। तो ये जो मृद भक्षण लीला है, ये भी एक बहुत ही रोमांचक लीला है भगवान की। अब देखिए, भगवान जब थोड़ा बड़ा हो रहे हैं तो भगवान अब अपनी लीलाओं को भी बढ़ा रहे हैं। तो भगवान 6 दिन का थे, 3 महीने का, 1 साल का, तो भगवान केवल नंद भवन में अपनी लीलाएं करते। अब जब भगवान और बड़ा होने लगे तो भगवान अब नंद भवन से बाहर जाने लगे, और भगवान बाहर जाते ऐसे ही नहीं, भगवान अपनी लीलाओं में अपने भक्तों की सेवा हेतु बाहर जाते। तो भगवान गौओं को लेकर वो वन में विचरण करने नहीं बल्कि गोचारण, गौओं को वहां पर उनका भोजन है वन में, तो गौओं का भोजन वन में है, इसलिए भगवान भी वन में जाने के लिए तैयार हुए। अब यहां पर देखिए ये लीला आती है कि माता यशोदा, उन्होंने अब भगवान को कहा, जब भगवान अब थोड़ा बड़ा हुए कुमार अवस्था तक 5 वर्षीय, तो माता यशोदा अब भगवान से कहती हैं कि कल से तुम्हें गोचारण के लिए जाना है, क्योंकि हम वैश्य हैं और ये हमारा व्यवसाय है गोचारण, गोरक्षा, वाणिज्य इत्यादि। तो कल से अब तुम अपने पिताजी का बिजनेस संभालो। कितने बड़े हैं भगवान? 5 वर्षीय। और कौन सा बिजनेस संभालो? गोचारण करने चलो, निकलो बाहर कल से, बहुत हो गया ये माखन मिश्री खाना, घर पे आराम फरमाना। तो भगवान भी अब तैयार हुए। तो माता यशोदा, अब भगवान जब तक नंद भवन में थे तो नंगे पैर घूमते थे, परंतु अब वन में जाना है तो कांटे कंकड़ ये सब चुभ जाएंगे। तो माता यशोदा ने अब भगवान के लिए छोटे छोटे से चप्पल भगवान के लिए बना रखे थे, ये कल से चप्पल पहनना शुरू करो। तो भगवान अब पहली दफा चप्पल देख रहे हैं, भगवान ने कहा ये क्या है, इसे कहां पहना जाता है? तो माता यशोदा ने कहा पैरों में पहना जाता है। क्यों क्यों पहनना चाहिए? तो माता यशोदा ने कहा भाई तुम बाहर जाओगे कांटे चुभेंगे कंकड़ चुभेंगे। तो भगवान देखिए अब क्या पूछते हैं, तुरंत भगवान क्या सोचने लगे। भगवान ने माता यशोदा से पूछा कि आप मुझे गौओं के साथ वन में भेज रही हो, परंतु चप्पल केवल मेरे लिए, ये मेरी गौओं के लिए चप्पल, उनके पैरों में यदि कंकड़ कांटे चुभेंगे तो? तो माता यशोदा हंसने लगी, लल्ला वो चप्पल नहीं पहनते। क्यों? क्या उनके पैर नहीं? क्या उनके अंदर कांटे नहीं छुप सकते? जब तक उन्हें चप्पल नहीं मिलेगी तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। अब देखिए माता यशोदा चिंतित हो गई। क्यों? क्योंकि कितनी गाय थी नंद महाराज के पास? 900,000। तो 900,000 गायों के लिए कितनी चप्पल लगती? आपके लिए होमवर्क, घर पे आप लोग कर लेना। तो माता यशोदा हंसने लगी, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बचकानी बातें नहीं करता, अरे बच्चा है तो बचकानी बातें करेंगे ही। तो भगवान अब कह रहे, नहीं नहीं नहीं, उन्हें चप्पल तो मेरे पास चप्पल, दोनों के पास चप्पल तब बाहर जाएंगे। तो माता यशोदा सोच रही कि सुबह संभल जाएगा, समझ जाएगा, सो जा अभी सो जा। तो भगवान ने जो प्रण ले लिया, भगवान जो प्रण लेते हैं वो कभी च्युत नहीं होते अपने प्रण लेने से। तो सभी गवों ने सुन लिया, सभी गवों ने सुन लिया। क्या सुन लिया? कि अरे भाई ये हमारे आराध्य देव ये कल बिना चप्पल जाएंगे, क्योंकि हमें चप्पल नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं कि वो लोग सब अब मथुरा का बाटा स्टोर ढूंढने लगे कि चलो कहां पर चप्पल मिलता है, वहां से चप्पल लेकर आए ये वो। तो सभी गवों ने एक साथ रात्रि में किया क्या, समस्या थी कि यदि हमारे गोपाल बिना चप्पल जाएंगे तो कितने उनके प्रवाल मृदु अंगरी, इतने कोमल उनके चरण हैं, उनके तलवे और भी कोमल, उनमें यदि वृंदावन के कांटे कंकड़ चुभेंगे तो कैसे हमें सहन होगा। तो सभी ने इष्ट गोष्ठी बुलाई और उसमें अब पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे हम हमारे गोपाल को इन कांटे और कंकड़ों से बचाएं। तो रात्रि में सारे गौ वो पूरे वृंदावन में गए और अपने खुरों से उन्होंने जो वृंदावन की माटी है वो वृंदावन की माटी को एकदम मुलायम मखमली बना दिया। और सारे जितने सारे कंकर थे उन्हें चूर चूर कर एकदम एकदम मुलायम धूली में परिणित कर दिया। और जितने सारे कांटे थे वो अपने खुरों में ले लिए। पूरी रात्रि ये सारी 9 लाख गायों ने ये सब कुछ किया। इसलिए यदि आप वृंदावन में जाओ तो वृंदावन की जो माटी है वो माखन के समान मखमली है वो माटी। इसलिए वृंदावन की परिक्रमा जब भक्त करते हैं तो अपनी चप्पलें निकाल कर करते हैं। तो ये गवों का आदान प्रदान भगवान के प्रति कि भगवान की रक्षा करने हेतु। तो ये है भगवान और भक्त के बीच का आदान प्रदान। भगवान जब 6 दिन के थे तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं तुम्हारी रक्षा जीवन भर करूंगा। और यहां पर गवों ने ये सब कुछ दिखा दिया अपने कर्मों के द्वारा कि कैसे उन्होंने भगवान के प्रति अपना प्रेम दर्शाया। तो भगवान अब निकल पड़े अपने सखाओं के साथ, गोपों के साथ। इसलिए एक सुंदर भजन में गाया गया है, जमुना तट पर धेनु चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना तट पर धेनु चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब वो बजाए हर ले सुध बुध सारी, हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया जब वो बजाए हर ले सुध बुध सारी, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सब बोलिए, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। ए जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय जय श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो एक दिन भगवान अपने गोप सखाओं के साथ गोचारण के लिए वन में निकले और सभी के साथ वो बैठे हुए अचानक भगवान उठ खड़े हुए और भगवान एकांत स्थान में गए और एकांत स्थान में जाकर भगवान ने माटी खाना शुरू किया। ये है भगवान की मृद भक्षण लीला। मृद, मृद कहते हैं माटी को, मृद का भक्षण करना भगवान ने शुरू किया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान की मृद भक्षण लीला के पीछे कितने कारण थे। कितने? आठ कारण भगवान के मृद भक्षण लीला के पीछे। क्यों भगवान ने माटी खाई? देखिए, भगवान माटी भी खाते हैं तो वो भी श्रीमद् भागवत में उसका एक श्लोक बन जाता है। भगवान करवट बदले, वो भगवान उसके विषय में उनका उल्लेख हो गया। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे हम कितनी बार करवट बदलते हैं, कौन सी पुस्तक में लिखा जाता है आज मिस्टर सो एंड सो ने करवट बदली, चलो इसका श्लोक और इसका गीत गाते हैं। आज नासिक में रहने वाले, इंद्रप्रस्थ के बगल में रहने वाले ये महानुभाव रात्रि में उन्होंने करवट बदली, बोलो बोलो करवट बदली, बोलो बोलो करवट बदली। या बचपन में हमने जो माटी खाई होगी, जो भी कुछ किया होगा, तो क्या उसके विषय में गीत गाए जाते हैं? अरे तुमने माटी खाई, माटी खाई, श्लोक हुआ, माटी खाई, भजन हुआ तुम्हारा। अरे हम जब रबड़ी खीर खाते हैं तब भी कोई पूछता नहीं, दुकानदार पैसा बिल मार देता है, पैसा भरो भैया। परंतु यहां पर भगवान माटी भी खा रहे हैं तो उसके पीछे आठ कारण उसका गुणगान हो रहा है। जानना चाहेंगे? तो भगवान ने अपनी मृद भक्षण लीला में किया क्या कि भगवान ने माता यशोदा का गुणगान भगवान करना चाहते थे और भगवान माता यशोदा को विश्वरूप दिखाना चाहते थे। तो ये सबसे पहला कारण बताया गया है कि भगवान ने माटी खाई क्योंकि भगवान असली गोरस चखना चाहते थे। गोरस किसे कहते हैं? कोई जानता है गोरस किसे कहते हैं? अरे गवों से निकला हुआ रस, दूध। दूध को गोरस कहा गया है। गो कहते हैं गो माता को। तो गो माता से जो रस निकलता है, गाय का जो दूध, उसे गोरस कहते हैं। तो गाय कि थनों से जो दूध निकलता है वो बनता कैसे है, कैसे बनता है? जब गाय चारा खाती है, और कौन सा चारा खाती है गाय? घास। गाय घास खाती है, घास खाने से दूध बनता है गाय के शरीर में। श्रील प्रभुपाद वो इस उदाहरण को लेकर एक वैज्ञानिक से कह रहे थे कि तुम सारे वैज्ञानिक मिलकर कह रहे हो कि हम जीवन पैदा कर सकते हैं, हमारे लेबोरेटरी में केमिकल ये रसायन एक साथ लाकर हम जीवन पैदा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, अरे एक ऐसी मशीन पैदा करो, एक ऐसी मशीन पैदा करो, यहां से घास डालो, वहां से दूध निकले। कोई ऐसी मशीन पैदा हुई है, यहां से घास वहां से दूध। अरे वो जब गन्ना भी डाला जाता है तो जानते हैं कि इसके अंदर रस है, तभी जाकर वो दूसरी तरफ रस निकलता है। परंतु कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं, श्रील प्रभुपाद ने कहा, कि जो ऐसी मशीन निकाल दे, एक तरफ घास दूसरी तरफ दूध। परंतु भगवान ने देखो क्या ये गाय को बनाया, कि एक तरफ से घास अंदर लेती है और दूसरी तरफ से दूध। तो घास कारण बनते हैं गोरस का, परंतु भगवान सोच रहे थे कि ये घास का कारण क्या है, पृथ्वी माटी। तो माटी पर ये घास, माटी से ये घास उगा, घास को गवों ने खाया, वहां से वो गोरस निकला, और पृथ्वी को भी गो कहा गया है। इस पृथ्वी को भी गो कहा गया है, गो माता को गो कहा गया है, हमारी इंद्रियों को गो कहा गया है, इसलिए उनका नाम है गोविंद। जो पृथ्वी को आनंद दे, जो हमारे इंद्रियों को आनंद दे, और जो गौओं को आनंद दे, वो है श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, वो है श्री गोविंद। तो भगवान सोच रहे थे कि मैंने इतना गोरस तो अब तक ले लिया है, दूध दही माखन ये सब कुछ मैंने चख लिया, परंतु जो असली मूलतः गोरस है, जहां से ये निकला है, उसे मैंने अब तक चखा नहीं। तो चलो जो होलसेल मार्केट है गोरस का, वहां चलते हैं। और होलसेल मार्केट क्या? माटी। तो भगवान ने माटी ली और माटी चखना चाहा। तो असली गोरस चखना चाहते थे भगवान, इसलिए भगवान माटी खाने लगे। सभी 33 करोड़ देवताओं को ब्रज रज का आस्वादन कराना चाहते थे भगवान, तो भगवान ने कैसे करवाया आस्वादन? क्योंकि ये सारे 33 करोड़ देवता कौन हैं? ये मंत्री हैं। किनके? उन प्रधानमंत्री के। तो ये सारे जो 33 करोड़ मंत्री, ये भगवान के शरीर में समाए हुए रहते हैं। ये सारे 33 करोड़ देवता भगवान के शरीर में समाविष्ट रहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि भाई ये ब्रज रज का आस्वादन इतने सारे लोग कर रहे हैं, परंतु ये बेचारे 33 करोड़ देवता मेरे अंदर समाविष्ट हैं, तो इन्हें भी तो ब्रज रज का आस्वादन होना चाहिए। तो चलो थोड़ा ये ब्रज रज ये माटी लेकर अंदर 33 करोड़ देवताओं को थोड़ा चखा दूं। तो इन सब देवताओं को ब्रज रज की महिमा चखाने के लिए भगवान ने माटी खाई। आयुर्वेद के सिद्धांतों को दर्शाने हेतु, ये कैसे समझे? अरे भाई सभी वेदों के स्रोत हैं भगवान, चाहे आप धनुर्वेद लो चाहे आप आयुर्वेद लो, सभी वेदों के स्रोत हैं भगवान। तो भगवान वो सबसे बड़े वैद्य, तो भगवान जानते थे कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा माखन अंदर डाल लेता है ना, तो जब बहुत माखन खा लेता है कोई व्यक्ति, तो हो सकता है कि अंदर कुछ बदहजमी हो जाए। तो उस माखन के प्रकोप को निकालने के लिए ऊपर से माटी लेपी जाती है। कोई व्यक्ति यदि बहुत दूध दही माखन अंदर डाल दिया उसने, और उसके वजह से उसका पेट खराब हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उस माखन उस दूध दही के प्रकोप को दूर करने के लिए आयुर्वेद के अनुसार बाहर से पेट के ऊपर माटी लेपी जाती है, ताकि वो माटी उसके प्रकोप को सोख ले। तो भगवान ने सोचा अरे बाहर क्यों, अंदर ही डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मई इतना माखन इतना दही इतना दूध पिलाई थी, तो भगवान सोचे थे कि बहुत ज्यादा हो गया ये माखन, इतना सब कुछ, इतना गोरस, बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए भगवान इस आयुर्वेद के सिद्धांतों को दर्शाने हेतु उन्होंने वो माटी अपने मुख के अंदर डाली। गोपियों की शिकायतों को बंद कराने हेतु, ये कैसे समझे कि भगवान जानते थे, भगवान जानते थे कि अब जैसे ही मैं माटी खाऊंगा तो ये सारे मेरे सखा, मेरे से इतने निकट ये सारे मेरे सखा ग्वाल बाल ये जाकर माता यशोदा को शिकायत करेंगे, मैया मैया तुम्हारे कान्हा ने माटी खाई। तो भगवान आगे चलकर माता यशोदा को ये कहने वाले थे कि अरे भाई मैंने माटी खाई और मेरे ही निकट के मित्र यदि आकर शिकायत कर रहे हैं, तो आगे चलकर ये गोपियां जब शिकायत करेंगी, क्या शिकायत, कि ये माखन खाता है हमारे घर पर आकर, तो विश्वास मत करना, तो विश्वास मत करना इनके ऊपर। अरे जब इतना निकट का कोई सखा जाकर कंप्लेंट शिकायत कर दे और वो भी माटी खाने के लिए, अरे भाई तुम्हारी थोड़ी घर की माटी खाई। तो मानो भगवान उन गोपों से ये कह रहे तुम्हारे बाप की माटी है क्या? हाँ, उनके बाप की ही माटी थी, क्योंकि उनके बाप थे वो भगवान ही और उन्हीं की माटी थी वो। तो भगवान आगे चलकर यशोदा को ये बताने वाले थे इससे कि देखो इन पर, ये गोपियों पर बिल्कुल विश्वास मत करना, इन्हीं के पुत्र ये आज शिकायत करने वाले हैं, मैं माटी खाने वाला हूं इसलिए। तो भगवान देखिए क्या क्या सोच रहे हैं माटी खाते समय। और कलयुग के ढोंगी भगवानों का पर्दाफाश कराने हेतु, कैसे कि भगवान ने आगे चलकर विश्वरूप अपने मुख में दिखा दिया, माटी थोड़ी सी अंदर डाली और अपने मुखमंडल में पूरा भूमंडल पूरा विश्वमंडल भगवान ने, ब्रह्मांड सारे ब्रह्मांड सारी सृष्टियां छोटे से मुख में माता यशोदा को दिखा दी। तो भगवान ये दर्शा रहे थे कि कलयुग में ये जो तथाकथित ढोंगी भगवान है, पकड़ो इनको, माटी डालो इनके मुख में और देखो विश्वरूप दिखाते हैं कि नहीं फिर, और यदि नहीं दिखा पा रहे तो उसी माटी में भगवान बने फिर रहे हैं। भगवान देखो माटी खाकर, केवल माटी थोड़ी सी खाकर भगवान विश्वरूप यशोदा माई को दिखा दिए। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चाम शकल पुंसाम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इसलिए वो भगवान है कि भगवान ऐसे अद्भुत कार्य भगवान कर सकते हैं। तो भगवान, हालांकि यहां पर समय कम होने के वजह से हम लिख नहीं पाए, एक और कारण यह था, आठ कारणों के अलावा एक और कारण यह था कि भगवान का गुणगान हुआ है, पृथ्वी भारनाश मुकुंद, पृथ्वी का भार कम करने के लिए आए हैं ना भगवान। तो भगवान सोचे कि अभी मैं शुरू ही किया हूं अपनी लीला, तो चलो थोड़ा पृथ्वी का भार कम करता हूं, थोड़ी सी माटी लेकर अपने मुख में डालता हूं तो थोड़ा तो भार शुरू हो जाएगा कम होना। तो ये आगे का कारण, माता यशोदा को सबसे पहले विश्वरूप दिखाना चाहते थे भगवान। एक परीक्षा आपके लिए, भगवान ने किन किन को विश्वरूप दिखाया अपना? अर्जुन को और दुर्योधन को। दुर्योधन को भी भगवान ने विश्वरूप दिखाया जब शांतिदूत बनकर भगवान गए थे। तो भगवान शांतिदूत बनकर गए और ये दुर्योधन, देखो ये भगवान को ही बंदी बनाने निकला। दुर्योधन वो कहता है कि ये कृष्ण के वजह से ही ये पांडव इतने शक्तिशाली हो रहे हैं, ये कृष्ण ही सारे जड़ का कारण है, बंदी बनाओ इस कृष्ण को। वो सही कह रहा था, कृष्ण ही सभी के जड़ हैं। कहा गया है भागवत में, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तद स्कंद भुजोपशाखा। हम सब केवल जैसे वृक्ष की टहनियां, पत्ते, फूल इत्यादि हैं, वैसे हैं। और भगवान कौन है? यथा तरोर तरु, वो जो जड़ है वो जड़ के समान। तो दुर्योधन सही कह रहा था, यही कृष्ण सभी जड़ के कारण है, बंदी बनाओ। ये कृष्ण को बंदी बनाओगे, सब पांडव अपने आप भागते हुए आ जाएंगे पीछे पीछे। तब भगवान ने अपना विश्वरूप दुर्योधन को दिखाया और कहा, दुर्योधन अरे मूर्ख, अरे उद्दंड, तुम मुझे बंदी बनाओगे इस विश्वरूप को? चलो प्रयास करो। और दुर्योधन इतना बड़ा मूर्ख, फिर भी उसने प्रयास किया। भगवान के कहने के बावजूद, दिखाने के बावजूद दुर्योधन प्रयास कर रहा है भगवान के विश्वरूप को बंदी बनाने के लिए। तो भगवान ये सोच रहे थे कि छोटा बालक होता है ना, वो जब कोई बहुत अद्भुत कार्य सीख लेता है करना, तो सबसे पहले अपनी माता को बताना चाहता है ना। जैसे मुझे याद है, हमारे बड़े भाई बचपन में एक ड्राइंग कंपटीशन में, स्कूल के ही परीक्षा थी, ड्राइंग की परीक्षा, तो बताया गया था कि ये चित्र बनाना है, सभी लोग इतने समय में चित्र बनाओ। तो अकस्मात उनके हाथ से इतना अच्छा वो चित्र निकल गया, इतना अच्छा उन्हें लगा खुद के हाथ से निकाला हुआ वो चित्र। अब वो देना था, चित्र निकाल कर वो टीचर को देना था कि परीक्षा थी, ड्राइंग की परीक्षा थी वो। परंतु उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्हें लगा कि मम्मी को दिखाना चाहिए। तो सभी लोग वो अपना ड्राइंग का चित्र टीचर को दे रहे हैं, ये घर पे लेके आ गए, मम्मी को, मम्मी देखो कितना अच्छा बनाया मैंने। मुझे, अरे लेकिन तू घर कैसे लेकर आ गया? नहीं, दिखाने के लिए, जो मैं अच्छा करूं दिखाना चाहिए ना तुम्हें सबसे पहले। तो एक जो छोटा सा बालक होता है, उसका मनोभाव क्या रहता है? कोई भी अच्छी वस्तु जब वो सीखता है तो सबसे पहले अपनी मम्मी को दिखाना चाहता है। तो भगवान अब जैसे ही, अरे दुर्योधन और बाकी सबको मैं विश्वरूप दिखाऊंगा, उससे पहले यशोदा मैया तुम्हें मैं दिखा दूंगा। तो भगवान थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे मां के सामने, देखो विश्वरूप मुझे आगे दिखाना है, तुम देख लो ठीक से है कि नहीं सब अंदर। तो भगवान सबसे पहले माता यशोदा को विश्वरूप दिखाना चाहते थे, इसलिए कोई कारण चाहिए ना, तो जो पूरा विश्व है उसका एक थोड़ा सा नमूना अपने मुंह में डाला और सारे विश्व को, ब्रह्मांड को, सृष्टि को भगवान ने अपने मुख में दिखा दिया। भगवान ब्रजरज की महिमा स्थापित करना चाहते थे कि ये जो ब्रजरज आगे चलकर कलिग निवासियों के उद्धार का कारण बनेगी, इस ब्रजरज को मैं अपना महाप्रसाद तो बना दूं, जो भी भगवान के मुख से स्पर्श हो जाए वो भगवान का महाप्रसाद हो जाता है। तो ब्रजरज में इतनी शक्ति क्यों है कि भगवान एक तो अपने चरणों को उसके ऊपर रखे थे, भगवान ने कभी भी वृंदावन में चप्पल जूते नहीं पहने, क्योंकि भगवान चाहते थे कि साक्षात मेरे जो चरण हैं वो वृंदावन पर लगते रहें। इसलिए भगवान उसे अपना महाप्रसाद और बनाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने थोड़ी सी माटी, थोड़ा सा ब्रजरज अपने मुख में लिया। तो ये एक कारण था भगवान माटी क्यों खाए। माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम की गहराई जानने हेतु, और भगवान ने माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम की गहराई कैसे जानी, माता यशोदा ने जब विश्वरूप को भगवान के मुख में देखा तो माता यशोदा थोड़ा भ्रमित हो गई। अब देखिए यहां पर बहुत सी माताएं बैठी हैं, आप यदि अपने पुत्र के मुख में देखो तो आपके पुत्र के मुख में यदि आपको दिखाई दे सूर्य, चंद्र, सारे नक्षत्र, सारे तारे, सारी दिशाएं, सारे 24 तत्व, ये यदि किसी माता के पुत्र के मुख में दिखाई दे तो चिंतित होगी कि नहीं, अरे मुख में क्या होना चाहिए। छोटे से बालक के मुख में छोटे छोटे दांत होने चाहिए, छोटी सी जिह्वा होनी चाहिए, छोटा सा मुख होना चाहिए, ये सब क्या, यहां पर सूर्य, यहां पर चंद्र, यहां पर पृथ्वी, यहां पर सारे लोग, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे तारे, यहां तक कि माता यशोदा ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा। तो माता यशोदा फिर वो सोचने लगी, माता यशोदा अब ये दृश्य देख रही है जो हम ये दृश्य देख रहे हैं, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख में। तो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा क्यों, क्योंकि जब सारे ग्वाल बाल गए माता यशोदा को शिकायत किए कि तुम्हारे लाला ने माटी खाई आज, पकड़ो जाकर, संभालो अपने बेटे को, तो माता यशोदा भागती हुई गई और ग्वाल सखाओं ने शिकायत की क्यों, क्योंकि सारे ग्वाल बाल ये सोच रहे थे कि हम जो कुछ करते हैं एक साथ, हम चोरी भी करते हैं तो एक साथ करते हैं, खेलते हैं एक साथ खेलते हैं, खाते हैं एक साथ खाते हैं, ये अकेले में जाकर माटी क्यों खाई इसने, सब कुछ किया साथ में किया, उठते बैठते साथ में, माटी खाई अकेले में, तो इसलिए ये सारे सखा जाकर, यहां तक कि बलराम जी भी जाकर वो शिकायत कर रहे हैं माता यशोदा को। तो माता यशोदा पहले विश्वास नहीं कर रही थी केवल उन गोपों के वाक्यों पर, क्योंकि भगवान ने फिर माता यशोदा को कहा कि यदि मैंने माटी खाई तो इस बलराम से पूछ लो। तो माता ने बलराम जी से पूछा, बलदाऊ माटी खाई है कृष्ण? तो बलराम जी कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, कृष्ण बलराम की तरफ, देखो कुछ उल्टा सुल्टा कहा तो देखना। तो बलराम जी कृष्ण की तरफ हंसते हुए, यशोदा माई की तरफ हंसते हुए, यशोदा माई पूछा, बोलो खाई कि नहीं इसने? तो बलराम जी कहते, हां खाई है। बस अब माता यशोदा को सब विटनेस आ गया सामने, सारे सबूत सामने। तो भगवान कहते हैं, अरे ये बलराम तो कहेगा किसी और का पुत्र है ये तो, अरे तो रोहिणी का पुत्र है, थोड़ी मेरा भाई है, तो ये तो कहेगा, इसकी बात पर क्या विश्वास कर रहे? तो माता यशोदा कहती, तो फिर तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र जो पैदा हुए हो मेरे, तुम्हारी बात पर विश्वास करूं कि तुमने माटी नहीं खाई? तो भगवान कहते हैं, ठीक है, यदि मेरे बात पर विश्वास नहीं तो मेरे मुख में देख लो। तो माता यशोदा को लगा कि जब इतने विश्वास से ये कह रहा है कि मुख में देख लो, तो हो सकता है इसने नहीं खाई हो। तो माता यशोदा उस समय थोड़ा संशय उनके अंदर आया, तो ठीक है खोलो मुख खोलो। अब भगवान को मौका मिला विश्वरूप दिखाने का। तो फिर भगवान ने अपना मुख खोला तो ये माता यशोदा देखती है सब जगह पर मुख, और मुख इतना सा और भी छोटा, मुख और भी छोटा, इतना सा। देखिए कितने से हैं भगवान, हमको तो भगवान का मुख भी नहीं दिख रहा, इतना सा मुख भगवान है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बा दिया भगवान ने और उसके अंदर फिर सारा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। इतना सा ही मुख भगवान बनाए रखे और उसके अंदर भगवान सारे ब्रह्मांड विश्व को दिखा रहे हैं। तो माता यशोदा आप देख रही है, माता यशोदा देख रही कि ये सारे ब्रह्मांड नक्षत्र स्वयं को देख रही है। तो माता यशोदा फिर वो कहती हैं, अहम ममासौ पतिरेश मे सुतो व्रजेश्वरिस्य खिल वित्त पासति गोपश्च गोपा सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थम कुमति समे गति। माता यशोदा क्या सोच रही है? माता यशोदा भगवान के मुख में जब ये पूरा विश्वरूप देख रही है तो माता यशोदा सोच रही है कि शायद मेरी कुमति हो गई है। यन माया ये थम कुमति समे गति, शायद मेरे अंदर कोई कुमति आ गई कि मैं अपने आप को ब्रजेश्वरी कहती हूं। ब्रजेश्वरी अस्य अखिल वित्त पासति, मैं अपने आप को नंद महाराज की पत्नी मान रही हूं, मैं अपने आप को इस कृष्ण की माता मान रही हूं। ये कोई मेरा पुत्र नहीं, ये शायद स्वयं भगवान है। और माता यशोदा स्वयं भगवान को अपना पुत्र मान रही है, इसे वो कुमति मान रही है। और आचार्य कहते हैं कि माता वात्सल्य, माता यशोदा के वात्सल्य को यदि देखें, तो यदि माता यशोदा अपने वात्सल्य में भगवान को यदि अपना पुत्र नहीं मानती तो वो उसकी कुमति है। तो भगवान देखने लगे कि अरे भाई ये मुझे भगवान मान रही, नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये भी मुझे भगवान माने, क्योंकि मैं वृंदावन में लीला करने आया हूं अपने ऐश्वर्यों को छोड़कर, ऐश्वर्य विहीन लीला करने मैं आया हूं। तो इसलिए भगवान माता यशोदा जो ये सोच रही है कि शायद मेरा पुत्र नहीं बल्कि भगवान हो सकता है। तो माता यशोदा सोच रही कि मेरी कुमति है कि मैं इसे अपना पुत्र मान रही हूं, और भगवान सोच रहे थे कि यह तुम्हारी कुमति है कि तुम मुझे भगवान मान रही हो, क्योंकि मैं भगवान हूं परंतु तुम्हारे सामने नहीं। तुम्हारे सामने तो मैं तुम्हारा छोटा सा कन्हैया। तो भगवान इसे कुमति मान रहे थे जो माता यशोदा कुमति कह रही है। तो इस वात्सल्य प्रेम की गहराई को भगवान नापना चाहते थे कि माता यशोदा अपने वात्सल्य प्रेम की कितनी गहराई तक पहुंची है। और इसके पश्चात परीक्षित महाराज जब ये सुन रहे हैं तो वो भाव विभोर हो गए और परीक्षित महाराज कहते हैं, नंद किम करोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम् हरि। परीक्षित महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, ये यशोदा मई का क्या भाग्य है। महाभागा, क्या नंद और यशोदा ने कैसे पुण्य किए होंगे कि ऐसे भगवान वो उनका स्तनपान कर रहे हैं और उनकी डांट फटकार सुन रहे हैं, उनके द्वारा दंडित हो रहे हैं। माता यशोदा कृष्ण के दाहिने हाथ को पकड़े हुए थी, क्योंकि दाहिने हाथ ने माटी खाई थी तो दाहिने हाथ को दंडित कर रही थी पकड़कर। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये यशोदा का भाग्य क्या है, कितना महान भाग्य है इस यशोदा को। इसलिए माता यशोदा के विषय में कहा गया है, यशोदा को लल्ला गौवन का चरैया, देखो मन बस गया मोहे कृष्ण कन्हैया, राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण, बोलो बोलो राधे कृष्ण, बोलो जय जय राधे कृष्ण, बोलो यशोदा को लल्ला गवन का चरैया, देखो मन बस गया मोहे कृष्ण कन्हैया, राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण, बोलो बोलो राधे कृष्ण, बोलो जय जय राधे कृष्ण, बोलो तब बोलिए राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण, बोलो बोलो राधे कृष्ण, बोलो जय जय राधे कृष्ण, बोलो बंसी बजाए रे जिया भर माँ के जाने कहाँ छिप जाए, ऐसे ऐसे जादू करे रास का रचैया, देखो मन बस गया मोहे कृष्ण कन्हैया, राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण, बोलो बोलो राधे कृष्ण, बोलो जय जय राधे कृष्ण, बोलो यशोदा को लल्ला
गवन का चरैया देखो मन बस गया मोहे कृष्ण कन्हैया
राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण बोलो बोलो राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण बोलो।
जसोदा को लल्ला गौवन का चरैया देखो मन बस गया। तो माता यशोदा इनके विषय में कहा गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब वो अवतरित हुए तो जब उन्होंने उनको पूछा गया कि आप भगवान श्री कृष्ण के कौन से नामों का उच्चारण करना चाहोगे या कौन से भगवान श्री कृष्ण के नामों को आप जानते हो तो उन्होंने कहा मैं केवल भगवान श्री कृष्ण के दो नामों को जानता हूं, एक है श्याम सुंदर और दूसरा यशोदा नंदन। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के रूप में आए उन्होंने ये बता दिया। तो भगवान यहां पर माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम की गहराई को देखना चाहते थे, इसलिए भगवान ने माटी खाई ताकि माता यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है वो यहां से शुरू हो और इसके पश्चात भगवान माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम केवल विश्वरूप दिखाकर नहीं जानना चाहते थे बल्कि अब वही भगवान वही गोपाल वही गोविंद वही श्याम सुंदर माता यशोदा का यश, यही तो उनका नाम है यशोदा, जो कि यश दे वो है यशोदा। तो माता यशोदा का यश बढ़ाने के लिए भगवान ने अब अपनी आगे की लीला की। इस लीला में तो विश्वरूप दिखाया परंतु अपनी आगे की लीला में भगवान ने सारे विश्व को माता यशोदा का यश दिखा दिया। और वो लीला कौन सी थी? श्री दामोदर लीला, जिसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। तो भगवान ने मृद भक्षण लीला बहुत से कारणों के वजह से की, परंतु सबसे प्रमुख कारण था माता यशोदा का गुणगान करना चाहते थे। और यहां से उन्होंने नींव डाली कि माता यशोदा का गुणगान वो करेंगे। और ये जो आगे की लीला इतनी सुमधुर लीला है, ये दामोदर लीला, कि यदि इस दामोदर लीला को कोई व्यक्ति यदि एक बार भी सुन ले तो उस व्यक्ति का इस भौतिक संसार में जन्म मरण बंद। तो यदि आप लोग सब हम लोग सब यदि अपना जन्म मरण बंद करना चाहते हैं कि नहीं, तो हमें श्रद्धा से कल ये श्री दामोदर लीला की कथा का रसपान करना होगा। और इसलिए हम विशेष आपको, मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभीओं को कल की इस कथा के विषय में न्योता देना चाहूंगा कि कल आप यदि आपने नहीं आने की योजना कर ली है तो उस योजना को आप तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए और सब कुछ छोड़कर आप कल की जो दामोदर लीला है, इसलिए हमने इसे दो भाग में लिया है, कल भाग एक और उसके पश्चात भाग दो में दामोदर लीला। बहुत ही सुमधुर लीला है और ऐसे ऐसे तत्व ज्ञान हमारे आचार्य बताए हैं दामोदर लीला के द्वारा कि यदि इसका श्रवण हम एक बार भी श्रद्धा पूर्वक कर लें तो भगवान के धाम में निश्चित ही हमारा प्रवेश और भगवान की कृष्ण भक्ति में निश्चित ही हमारा प्रवेश होगा। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे श्रीमान शिक्षा सगम प्रभु।